जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
नर नारायण मिलकर भगवद गीता जह गावे।
नर नारायण मिलकर भगवद गीता जह गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
भरत वंश का गौरव वर्णन।
भरत वंश का गौरव वर्णन।
भीष्म पिता महव्रत परिपालन।
भीष्म पिता महव्रत परिपालन।
भक्त विदुर का पवित्र जीवन।
भक्त विदुर का पवित्र जीवन।
सर्प
शस्त्र में वैशंपायन मुनि हरि यश गावे। सर्प शस्त्र में वैशंपायन मुनि हरि यश गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे।
नल दमयंती सुरम्य वार्ता।
नल दमयंती सुरम्य वार्ता।
गुरुकुल कलह भयानक गाथा।
गुरुकुल कलह भयानक गाथा।
विपदाओं में श्री हरि दाता।
विपदाओं में श्री हरि दाता।
पतिव्रता सावित्री यम को जीत कीर्ति पावे।
पतिव्रता सावित्री यम को जीत कीर्ति पावे।
भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे।
भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
धर्मराज का स्वधर्म पालन।
धर्मराज का स्वधर्म पालन।
भीमार्जुन का दुष्ट निकंदन।
भीमार्जुन का दुष्ट निकंदन।
अभिमन्यु का व्यूह विभेदन।
अभिमन्यु का व्यूह विभेदन।
सभा में पांचाली पर
भरी सभा में पांचाली पर कृष्ण कृपा होवे।
भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे।
नर नारायण कर भगवत गीता जह गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। जहाँ धर्म है कृष्ण वही है,
जहाँ धर्म है कृष्ण वही है।
सत्य धर्म की सदा विजय है,
सत्य धर्म की सदा विजय है।
यही सिखावत व्यास देव है,
यही सिखावत व्यास देव है।
सज्जन संकट सागर लांघे
सज्जन संकट सागर लांघे सुख शांति पावे। जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे,
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे। जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
पाप मुक्ति व्यामोह निवारण,
पाप मुक्ति व्यामोह निवारण।
पुण्य विवर्धन कविवर जीवन,
पुण्य विवर्धन कविवर जीवन।
वेद सार संताप विनाशन,
वेद सार संताप विनाशन।
श्रवण करे जो धर्म संपदा विजय पावे,
श्रवण करे जो धर्म संपदा विजय पावे। श्रवण करे जो धर्म संपदा विजय श्री पावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे। जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे, आरती सुर नर मुनि गावे, आरती सुर नर मुनि गावे।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रभारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च विनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सेवन्तिका नकुलचम्पकपाटलाग्रै पुण्णागजातिकरवीरसाल पुष्पै बिल्वप्रवालशीतलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। गोपाल कृष्ण भगवान की।
हरि ओम। पूज्य महाराज के पुण्य चरणों में वंदन। भारत की गौरव गाथा व महाभारत, वो महाभारत में यह संतों के मुख से शास्त्रोक्त जो श्रीमुख से जो बातें हो रही है, जो हम टीवी वगैरह में दर्शन करते हैं उसमें कितना फर्क है। जो पात्र की पात्रता और पात्र जो है उसकी विचित्रता दोनों हमारे सामने आई, और भी कई पात्र हमारे बीच में आएंगे और उसकी जो ऊंचाई या नीचाई शास्त्रों के हिसाब से हम उसको कैसे गिने। और आज जो हम राष्ट्र की इच्छा रखते हैं कि दुनिया में भारत अपना गौरव स्थान प्राप्त करे, तो उसके लिए हमें किस मोड़ पे जाना चाहिए, उसका पूरा जो निर्देश है जो महाराज जी अपनी पुनितवाणी में कर रहे हैं। महाराज जी द्वारा कल हमने कृष्ण की अग्र पूजन का आनंद लिया। महाराज जी द्वारा और भी जो पर्व हमारे बीच में आएंगे, गीता जयंती तथा शनिवार को शाम जो धर्म राज्याभिषेक द्वारा पूर्णाहुति होगी शनिवार शाम को, तो यह जो क्रम है प्रवचन का वो ध्यान रखें कि शनिवार शाम तक रहेगा। शनिवार शाम को ही जो 7:30 बजे पूर्णाहुति होगी, यज्ञ एक शनिवार सुबह होगा जो यज्ञ की बात की, वह यज्ञ शनिवार प्रातः 9:45 बजे टेरेस पे होगा। आप सभी उसके दर्शन के लिए पधार सकते हैं, और यह जरूरी भी है क्योंकि यहां जितनी भी पूजन हो रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम है, जो भी पूजन हो रहे हैं उसका हमें यज्ञ द्वारा दर्शन भी होगा, और यह इतने दिन तक हम आए तो एक हमारा कर्तव्य है कि यज्ञ में भी हम सम्मिलित हो। पूर्णावती जैसे मैंने बताया शनिवार शाम को ही होगी, जिसको आप ध्यान में रखें। महाराज जी ने कई बातें हमारे बीच में बताई है कि उनके द्वारा कई अच्छे अच्छे वेद के क्लासेस वगैरह जो चल रहे हैं, वर्क वगैरह चल रहे हैं, पाठशालाएं चल रही है, क्योंकि वेद की आज के तारीख में बहुत 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 जरूरत है। हर रीत से हम वेद से छूट रहे हैं, तो तब ऐसी जो महाराज जी द्वारा यह प्रयास हो रहा है उसमें किस तरह से हम सहभागी हो, उसके लिए अगर महाराज जी से आप चर्चा भी करना चाहे तो 5वीं मंजिल पर 7:30 के पश्चात जब भी प्रवचन पूरा होता है तो महाराज जी ऊपर पधारते हैं, आधे घंटे घंटे तक बैठते हैं, आप सभी को दर्शन देते हैं। जो भी बातें आप करना चाहे, किस रीत से आप यह वेद की जो महाराज जी द्वारा ये मशाल ये जागृत की गई है उसमें आप कैसे जुड़ सके, उसकी भी चर्चा आप रूबरू उनके साथ कर सकते हैं। तो ये हमारी एक नैतिक फर्ज है कि जो भी आज वेद का प्रचार हो रहा है उसमें जिस रीत से हम हिस्सा दें वो कम है। तो आप सबसे निवेदन है कि तब जाके आप महाराज जी से चर्चा करें, शांति से बैठ के 5वीं मंजिल पर हॉल पे, वहां कुर्सी वगैरह की भी व्यवस्था है। और एक खुशी की बात है यह है कि प्रेमपुरी आश्रम द्वारा वेबसाइट कल शाम को ही अगर किसी ने देखी हो तो 6:30 से महाराज जी का ये जो प्रवचन है वह प्रारंभ हो गया था। आज का जो प्रवचन है, कल लगभग पहले प्रातः प्रवचन, प्रातः प्रवचन, स्वाध्याय प्रवचन, त्यार बाद जो महाराज जी द्वारा ये महाभारत की कथा का गान हो रहा है वह 12:30 के पश्चात हम सुन सकेंगे। तो जितने भी आपके विश्व भर में है उनको ये प्रेमपुरी की जो वेबसाइट है नीचे आपको उपलब्ध है, वार्षिक बुक वो ले ले, उसमें पूरा विवरण है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो उसमें डाउनलोड करके आप आराम से पूरी जो यहां कथा चल रही है उसके हम सुन भी सकते हैं। तो जरूर से आप सभी लाभ लें, और जो भी आपके मित्र वर्ग है, रिलेटिव है, दुनिया भर में, हिन्दुस्तान भर में, उनको खास बताएं कि यह प्रवचन धारा जो सुबह की है और ये महाभारत की कथा जो चल रही है वो सभी का वो जरूर से आनंद ले। हमारे पीछे जो खड़े हैं दिनकर है तो उनका प्रयास है और उनके हिसाब से वो स्पेशल प्रोग्राम में आ जाता है, तो उस हिसाब से आप देखें, उनका भी हम स्वागत ये जब कथा की समाप्ति के बाद करेंगे। आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए हरिओम।
भजे व्रजै कमण्डनम् समस्त पाप खण्डनम्
समस्त पाप खण्डनम्
स्वभक्त चित्तरञ्जनम्
स्वभक्त चित्तरञ्जनम्
सदैव नन्दनन्दनम्
सदैव नन्दनम्
गोच्छमस्तकम्
सुपीच्छ गोच्छमस्तकम्
सुनाद वेणुहस्तकम्
सुनाद वेणुहस्तकम्
अनङ्गरङ्ग सागरम्
अनङ्गरङ्ग सागरम्
नमामि कृष्णनागरम्
नमामि
गर्वमोचनम्
मनोज गर्वमोचनम्
विशाल लोललोचनम्
विशाल लोललोचनम्
विधूत गोपशोचनम्
विधूत गोपशोचनम्
महेंद्र मान तारणम नमामि कृष्ण वारणम
नमामि कृष्ण वारणम
कदम्ब सून कुंडलम
कदम्ब सून कुंडलम
सुचारु गंड मंडलम
सुचारु गंड मंडलम
व्रजांग नैक वल्लभम
व्रजांग
नमामि कृष्ण दुर्लभम
नमामि कृष्ण दुर्लभम
यशोदया समोदया
यशोदया समोदया
सगोपयासनन्दया
सगोपयासनन्दया
युतं सुखैकदायकम्
युतं सुखैकदायकम्
नमामि गोपनायकम्
नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजम् सदैव पादपङ्कजम्
मदीयमानसे निजम्
ददानमुत्तमालकम्
नमामि नन्द बालकम्
समस्त दोष शोषणम्
समस्त दोष शोषणम्
समस्त लोक पोषणम्
समस्त लोक पोषणम्
समस्त गोपमानसम्
समस्त गोपमानसम्
नमामि नन्द
नमामि नन्दलालसम्
भूभरावतारकम्
भूभरावतारकम्
भवाभिकर्णधारकम्
भवाभिकर्णधारकम्
यशोमति किशोरकम्
यशोमति किशोरकम्
नमामि
नमामि चित्तचोरकम्
दन्तकान्तभङ्गिनम्
दन्तकान्तभङ्गिनम्
सदा सदालसङ्गिनम्
सदा सदालसङ्गिनम्
दिने दिने नवं नवं
दिने दिने नवं नमामि नन्दसम्भवम्
गुणाकरं सुखाकरं
गुणाकरं सुखाकरं
कृपाकरं कृपापरं
कृपाकरं कृपापरं
सुरद्विषन्निकन्दनं
सुरद्विषन्निकन्दनं
नमामि
नमामि गोपनन्दनम्
नवीन गोपनादरम्
नवीन गोपनादरम्
नवीन केलिनम् पटम्
नवीन केलिनम् पटम्
नमामि मेघसुन्दरम्
नमामि मेघसुन्दरम्
प्रभात
प्रभालतकटम्
समस्त गोपनन्दनम्
समस्त गोपनन्दनम्
हृदम्बुजैकमोदनम् नमामि कुञ्जमग्रदम्
नमामि कुञ्जमग्रदम् प्रसन्नभानुशोभनम्
कामकामदायकम्
विकामकामदायकम्
दन्तचारु मृगंध चारु सायकम्
रसाल
वेणुगायकम्
नमामि
कुञ्जनायकम्
नमामि
कुञ्जकारणे
कृष्ण भगवान की
जय।
ज्ञानेश्वर महाराज की
जय।
सद्गुरु देव की
जय।
वृंदावन बिहारी लाल की
जय।
गंगा माता की
जय।
गौ माता की
जय।
भारत माता की
जय।
वेद व्यास भगवान की
जय।
शुकदेव भगवान की
जय।
महर्षि वाल्मीकि भगवान की
जय।
देवर्षि नारद भगवान की
जय।
ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की
जय।
ब्रह्मलीन स्वामी श्री पूज्य अखंडानंद जी महाराज की
जय।
नमः पार्वती पतये
हर
हर। मामि सद्गुरुं शांतम् सच्चिदानंद विग्रहम् पूर्ण ब्रह्म परानंदम् ईशमानंदी वल्लभम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर्नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेष्ट पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैक पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेश नन्दिनी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। एवं द्योतजिताः पार्था कोपिताश्च दुरात्मभिः धार्तराष्ट्रैः सहामात्यैर्निर्ययुर्गजसाह्वयात्। आनंद कंद परमात्मा की दिव्य कथा में तल्लीन महात्मा वैशंपायन जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान वेदव्यास जी और महाराज जन्मेजय आदि समस्त श्रोताओं के समक्ष राजन धर्मनिष्ठ पांडवों ने द्यूत का निर्णय स्वीकार किया। अत्यंत परिश्रम और पराक्रम के माध्यम से कमाया हुआ संपूर्ण राष्ट्र सारी संपत्ति के साथ और अपनी कीर्ति के भी साथ गंवा करके पांडव वन की ओर प्रस्थान करके गए। पांडवों का वनवास भगवान श्री राम के वनवास जैसा था नहीं। भगवान श्री राम ने जब वनगमन किया तो केवल गंगा जी के तट तक श्रृंगवेरपुर तक सुमंत्र जी के साथ रथ में बैठ करके गए। तत्पश्चात केवल भगवान श्री राम लखनलाल जी महाराज और भगवती जानकी साथ में है और कोई नहीं। पांडवों का वनवास उस प्रकार का नहीं है। पांडवों के साथ 14 रथ है, इंद्र सेनाधिक 14 अत्यंत अच्छे मंजे हुए कर्मचारी उनके साथ है। इंद्र सेनादयश्चैव भृत्या परिचतुर्दश रथैरनुययुः शीघ्रैः स्त्रिय आदाय सर्वशा। पांडवों का ढोया जाने वाला सारा साहित्य रथ में है। यद्यपि पांडव पदाती है चलते हुए ही आगे बढ़ने वाले हैं, किंतु उनके साहित्य को ढोने के लिए और उनकी छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उनके साथ 14 उत्तम रथ और सारथी है और सेवक है। मूल बात यह है कि पांडवों का यह वनवास जारी एक्साइल नाउ, उनको किसी प्रकार के शहर में प्रवेश नहीं करना है और राजनीति में हिस्सा नहीं लेना है, इस प्रकार के एक्साइल में वे हैं। इस बात को ध्यान में लेना चाहिए। बाकी वे अपनी सारी बातों को करने में स्वतंत्र हैं। महात्मा वैशंपायन जी वर्णन करते हैं, पांडव वन की ओर चले, उनके साथ साथ सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण देवता भी चले। वो सारी घटना हमने कल देखी। यद्यपि साथ में चलने वाले इन ब्राह्मणों ने यह कह दिया था कि राजन आपको हमारी चिंता का वहन नहीं करना, अस्मत् पोषण जा चिंता, राजन हम स्वयं अपना आहार कहीं से भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन प्रातःकाल में हमारे द्वारा किया जाने वाला जप तप हवनादि सारा जो नित्य कर्म है वह आपके पुण्य वर्धन के लिए होगा और अपराह्न काल में हम आपको अनेक प्राचीन कथाएं सुना करके आपका मनोबल बनाए रखेंगे। मनुष्य पुनः उठता है इन दो बलों पर, एक तो उसका मनोबल कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, एक बात, और दूसरी बात उसके पुण्य का संचय बढ़ते जाना चाहिए। एक बात पक्की ध्यान में रखना, यद्यपि आज कोई पातकी दिखने वाला विकास कर रहा होगा ऐसा लगता हो, तब भी शास्त्रकारों ने यही कहा है और यही सत्य भी है कि जब तक उसके पुण्य का संचय ठीक है तब तक तो वह ऊपर ऊपर जाता हुआ दिखेगा, पुण्य का संचय समाप्त होते ही वो नीचे गिरेगा। इसलिए पापियों की उन्नति देख करके हम लोगों को अपना पुण्य कार्य छोड़ना नहीं चाहिए। हमें तो क्योंकि वे उनके पुण्य के एफडी जमा है, तब तक उनकी मौज है, लेकिन जब वो खत्म हो जाएंगे, आगे आकर के आगे चलकर के प्रसंग आप देखेंगे। लोवश महर्षि से यह प्रश्न पूछा है धर्मराज ने, उसको तब देखेंगे। लेकिन मनुष्य को पुण्य की संपत्ति रोज रोज थोड़ी थोड़ी क्यों हो बढ़ाते रहना चाहिए। बहुत बड़े बड़े सत्कर्म अपने हाथों से न भी हो तो भी छोटे छोटे सत्कर्म करते रहना चाहिए। एक ओर पुण्य का संवर्धन हो और दूसरी ओर मनोबल अपना टिका हुआ रहे। पुण्य कितना भी है और आदमी डिप्रेशन में है, गड़बड़ का काम हो गया। यदि मेरा मनोबल अच्छा है लेकिन उत्थान करने के लिए जिस पुण्य की आवश्यकता है वो नहीं है, तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। धन्य है वे ब्राह्मण जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में पांडवों के साथ रहकर के और ये बात कहकर के कि महाराज जब आपके अनुकूलता थी उस समय आपने हमारी सेवा की, आज आपके प्रतिकूलता आई है, तो उत्तम ब्राह्मण का कर्तव्य यह होता है कि वह प्राणों की बाजी लगा करके यजमान की रक्षा करें। ब्राह्मण केवल दक्षिणा के लिए नहीं, ब्राह्मण भूदेव है और जैसी उसकी पूज्यता है वैसा उसका कर्तव्य भी शास्त्र ने उसके पीछे लगा दिया है। वयम राष्ट्रे जागरूयाम पुरोहिता, वेद में मंत्र आता है राष्ट्र में जब अन्य लोग अपना हित अनहित कुछ जानते नहीं है, उत्तम पुरोहितों का कर्तव्य होता है कि वे स्वयं उन्हें उसके लिए जागृत करें और रखें। ब्राह्मणों ने यह कहा था कि हम आपसे अपेक्षा नहीं रखेंगे कि आप हमारा भरण पोषण करें, यह तो बात ठीक, लेकिन फिर भी महाराज युधिष्ठिर को यह बात अखरती थी कि इतने पवित्र ब्राह्मण मेरे साथ रहे और मैं उनका पोषण नहीं कर सकूं, मैं उनको रोज खिला नहीं सकूं, मैं कैसा हूं। आगे चलकर के आप वर्णन देखेंगे, जब इंद्रप्रस्थ का राज्य था और धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट थे, उस समय उनके घर पर नित्य भोजन करने वाले ब्राह्मणों की संख्या 80,000 थी। तीस हजार वैखारसों को उनका सीधा सामग्री भोजन की उनके स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था थी। और ये सारा काम मैनेज कौन करता था पता है? द्रौपदी। वो प्रकरण तो देखना ही पड़ेगा आपको, कभी देखते हैं आज आता है कल आता है। द्रौपदी ने अपना आत्मवृत्त जो बतलाया उसमें समझेंगे आपकी द्रौपदी क्या वस्तु है। धर्मराज युधिष्ठिर को अब जिन्होंने अपने हाथों से इतने लोगों को रोज जिमाया हो, उसके साथ कुछ सैकड़ों में ब्राह्मण लोग हैं और वे अपनी अपनी व्यवस्था करके चले, अरे खानदानी मन मानता नहीं है बात। अरे गहरे लोगों की बात ही अलग है, उनकी उनका थिंकिंग का लेवल ही अलग होता है, खानदानी लोगों की सोच ही कुछ अलग होती है। धर्मराज बेचैन थे। एक दिन क्या हुआ, दिवसे तमध्यात्मरतो विद्वान शौनको नाम वै द्विज योगे सांख्ये च कुशलो राजानम इदम अब्रवी। धर्मराज की यह विशेषता है कि धर्मराज युधिष्ठिर से मिलने के लिए अनेक ऋषि महर्षि महात्मा लोग आया करते हैं। हमसे मिलने कौन आता है इससे भी हमारा ग्रेडेशन निश्चित होता है। अब ये ऋषि महर्षि जो चला करके कहीं भी जा ही नहीं सकते, वे स्वयं चला करके धर्मराज ऋषि से मिलने के लिए आते थे, डोनेशन मांगने के लिए नहीं आते थे। ये त्यागी महात्मा रहे, लेकिन धर्मराज पुण्य पुंज थे। धर्मराज ने कभी भी गलत कर्म नहीं किया था। अब वो द्यूत खेलने का गलत कर्म उनसे हो गया हो गया। वो तो यही हम लोगों को सिखाने के लिए कि बड़ा आदमी भी कहीं न कहीं भूल कर देता है, हो जाती है। उसका तो भूल का तो समर्थन नहीं किया जा सकता, उनके द्यूत का समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह नहीं किया जा सकता। और ये बात मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण आगे चलकर के ये बात बताएंगे, आप देखेंगे। तो भूल तो कर दिए, लेकिन मन में उनके जलन थी। शौनक महर्षि उनसे मिलने के लिए आए और चर्चा चली। महर्षि शौनक ने कहा, राजन एक बात ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की स्थिति जीवन में आ जाए, मनुष्य को उदास होकर के रोते नहीं बैठना चाहिए। यहां पर महाभारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, शोकस्थान सहस्राणी भयस्थान शतानि च दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। अब मैं क्या करूं, ये इतना हो गया, अब क्या करूं, अब तो मेरा सब बर्बाद हो गया। मनुष्य को ग्रस्त करते हैं दो विकार, एक शोक और एक भय। उसका हृदय भयभीत होता है और पुरानी बातों को सोच करके शोक ग्रस्त हो जाता है। भविष्यकाल को सोच करके हम लोग भयभीत होते हैं और भूतकाल को सोच करके हम शोक ग्रस्त होते हैं। अरे एक समय था जब मेरे पास कितना पैसा था, अब ये शोक ग्रस्त हो गया। भविष्यकाल का, आज तो ठीक है परिवार में सब लोग मेरी बात मान रहे हैं, लेकिन बेटा बड़ा हो जाएगा और बहू आएगी, पता नहीं फिर बेटा मेरी बात, भय लगता है सास को मां को। भविष्यकाल का भय और भूतकाल का शोक, ये जिसके मन को ग्रस्त करते हैं, राजन वो मूढ़ है, उसे फिर आगे कुछ करना सूझता नहीं। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह सर्वदा भूतकाल के शोक को दूर करके, भविष्यकाल के भय को दूर करके, ही मस्ट लिव इन द प्रेजेंट टेंस, वर्तमान में मुझे आज क्या करना चाहिए इसको सोचना। टुडे हम या तो पुरानी पुरानी बातें सोचते हैं या अगली अगली बातें सोचते हैं, भूतकाल में जो हो गया अब वह हमारे हाथ में नहीं है, भविष्यकाल में क्या होगा हमें पता नहीं है। हमारे हाथ में तो आज का दिन है, हमारे हाथ में तो आज का क्षण है। इस विषय को लेकर के अंग्रेजी में इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई है, जबकि ये मूल विचार योग वासिष्ठ का है। नाउ आपने पढ़ा होगा किसी ने, ये एक नाउ नाम की पुस्तक, लिविंग इन द प्रेजेंट टेंस, दुनिया भर के सारे विचारकों को सब कुछ लिखने दो, उसके सबके बीज आपको महाभारत में मिलेंगे। मनुष्य को चाहिए स्थितस्य गति चिंतनीय, आज आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में आप स्वयं को ठीक से समझ करके अब इसमें से भी बाहर कैसे निकल सकते हैं इसका विचार किया जाना चाहिए। इसलिए राजन इन सब बातों को छोड़ो, शरीर अर्थकृच्छ्रेषु दुर्गेषु व्यापत्सु स्वजनस्य च शारीर मानसे दुःखम् न सिद्धन्ति न सीदन्ति भवद्विधाः। अर्थकृच्छ्र, कभी कभी फाइनेंशियल अड़चन खड़ी हो सकती है, फिर कहते हैं कभी कभी अपने ही लोग पराये जैसा व्यवहार हम लोगों के साथ बदला लेने के लिए कर सकते हैं, कभी कभी हमारे शारीरिक व्याधि की आपत्ति आती है, कभी कभी हमारे मन में दुर्विचार आते हैं। उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह स्वयं अपने कर्तव्य का और भगवान का विचार करके इन सारी बातों से प्रभावित होने से बचे। इन सारी बातों से प्रभावित होने से बचना जिसने सीख लिया, वो पुनः किसी भी प्रकार की स्थिति से अपनी उन्नति अवश्य करके रहेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दैत्यों में बलि जो है, बलि मारा गया था, बलि मारा गया है, बलि का राज्य समाप्त हो गया है और उसके पराजित शरीर सुविश्च हापिता ये वर्णन है श्रीमद् भागवत में। संपत्ति गई, राज्य गया, मारा भी गया, कुछ भी नहीं रहा। शुक्राचार्य महाराज ने उसको जीवित मात्र कर दिया, बलि के पास केवल उसका शरीर मात्र है। ऐसी स्थिति से बलि ने अपना विकास इतना किया और ऐसे किया कि पुनः त्रैलोक्य को जीत लिया और आखिर इतने महान बलि बन गए कि भगवान नारायण को भी वामन का रूप लेकर के उसके द्वार पर आकर के भिक्षा मांगनी पड़ी। ये सारे सूत्र हैं पतन से भी मनुष्य को उत्थान कैसे कर लेना चाहिए इसके। चलो राजन, अब ये सारा उपदेश चलता रहा। धर्मराज ने कहा, बड़ी कृपा है आपकी, मेरी बुद्धि पर इस प्रकार का कोई प्रभाव इन बातों का होता नहीं, क्योंकि मैंने जिस बात को धर्म के रूप में देखा माना वो मैंने किया, उसके सारे परिणामों को भुगतने के लिए भी मैं सिद्ध हूं। दुख मुझे केवल एक बात का है, वो इस बात का है कि धर्मशास्त्र के अनुसार साथ में रहने वाले इन ब्राह्मणों का पोषण हम लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। यह स्वयं अपना इधर उधर जाकर के भिक्षा मांग करके और अपना उदर भरण करेंगे, ये बात मेरे गले उतरती नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये ब्राह्मण देखो, जिसके अंतकरण में उदात्तता होती है ना, देवता भी उसकी सहायता करते हैं। अपने मन को पहले उदात्त बनाना चाहो, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे बड़ा काम करना है, मुझे पवित्र काम करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, यह केवल विचार कुछ दिनों तक आप करते रहिएगा, अपने आप द वर्ल्ड विल गेट मैनेज एंड फॉलो यू, इट शैल बिकम हेल्पफुल। लेकिन यह भाव तो मन में होना चाहिए कि मुझे प्रामाणिकता के साथ कुछ सेवा लोगों की पूरे मन से करनी है। आपकी ये पैशन, आपके अंतकरण की ये तीव्र भावना अपने आप संसार को प्रभावित करती है। ये वर्ल्ड वाइड वेव्स केवल आपके वेबसाइट की नहीं होती है, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म वेव्स हमारे मन की होती है और वे जाकर टकराती है कहीं ना कहीं। एक अच्छा संकल्प करो। धर्मराज ने कहा, मैं केवल मुझे इतनी व्यथा है। शौनक महर्षि ने कहा, मैं एक उपाय बतलाता हूं। सारे संसार का भरण पोषण सूर्य नारायण की कृपा से होता है, आप भगवान सूर्य की आराधना करो। मैं आपको ये मंत्र बतलाता हूं, भगवान सूर्य आप पर कृपा करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने शौनक महर्षि के कहे अनुसार सूर्य भगवान की आराधना करना आरंभ किया। अल्पकाल में भगवान सूर्य नारायण उनके सामने खड़े हो गए। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मय वपुर धृतशंख चक्र। धर्मराज ने स्तवन किया, वंदन किया। सूर्य भगवान ने कहा, आपके मन का संकल्प मैं जानता हूं, आपके जीवन की पुण्यशीलता को मैं जानता हूं, इसलिए लो युधिष्ठिर यह एक पात्र मैं तुम्हें देता हूं, यह स्थाली यह अक्षय पात्र, अक्षयंते भविष्यति फलमूलाभिम शाकम संस्कृतम यद महानसे चतुर्विधम यदन्नाद्यम अक्षयंते भविष्यति। आपको याद आता है क्या ये वाक्य कहीं से? अक्षयंते भविष्यति। चलो बंबई के लोगों की परीक्षा हो जाए थोड़ी। एलआईसी का बोध वाक्य क्या है? योगक्षेमम। ये अक्षयंते भविष्यति और किसका है? योगक्षेमम तो गीता का आया। और ये सारा एक महान पुरुष ने किया हुआ काम है। अच्छे अच्छे संस्कृत शब्दों को, श्लोकार्धों को चुन करके अच्छे अच्छे स्थानों पर भारत में बैठा दिया। सूर्य भगवान ने कहा यक्षय पात्र, इसमें से रोज सिद्ध अन्न निकलेगा, खाद्य पेय चोष्य लेय है चारों प्रकार का, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा इसमें से निकलता रहेगा। प्रातः काल से सूर्योदय से यह अन्न आपको प्राप्त होगा और भगवती द्रौपदी के भोजन होने तक यह काम चलेगा। द्रौपदी का भोजन हो गया फिर उस दिन का अन्न उसमें से प्राप्त होना बंद हो जाएगा, दूसरे दिन सूर्योदय से फिर आरंभ हो जाएगा। जितने लोगों को चाहो तुम जिमा सकते हो, निश्चिंत कर दिया सूर्य भगवान ने। भगवान वैशंपायन महात्मा वर्णन करते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर इतने प्रसन्न हो गए इस बात को लेकर के कि चलो अब मुझे जो एक चिंता सता रही थी वो चिंता दूर हो गई। इन ब्राह्मणों को दर दर भटक करके अपना पेट भरने के लिए परिश्रम करना पड़े ये बात अब रहेगी नहीं। अब मुझे चाहे जितने दिन क्यों न हो रहना पड़े तो रहना पड़े वन में, मुझे राज्य और वन में कोई अंतर नहीं है। पांडवों का वनवास इधर आरंभ हो गया, चलो थोड़े हस्तिनापुर जाकर के देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। पांडवों के हस्तिनापुर से निकल जाने के पश्चात उधर धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा, विदुर पांडव कैसे गए, उनको क्या लगा? विदुर जी ने कहा उनको क्या लगा, उनको कितना पछतावा हुआ, ये सारी बातें जिस प्रकार से उन्होंने हस्तिनापुर से गमन किया उससे स्पष्ट होती है। दूसरा आशंका मैं समझा नहीं, कैसे गए वो? विदुर जी ने वर्णन किया, जब पांडव हस्तिनापुर से प्रस्थान कर रहे थे चारों ओर लोग रो रहे थे, रोते हुए लोग उनको विदा कर रहे थे। इतनी धार्मिकता जिनके जीवन में निरंतर झलकती रही उनके ऊपर ये आपत्ति आवे। पांडवों ने यहीं पर बलकल धारण कर लिए, बलकल धारण करके ही पांडव यहां से विदा हुए। लेकिन बलकल धारण करके चलने वाले इन पांडवों के आगे उनके अग्निहोत्र का अग्नि लेकर के धौम्य महर्षि जा रहे थे। धौम्य महर्षि पांडवों के कुलाचार्य हैं। अग्निहोत्र के अग्नि का संरक्षण आजीवन करना होता है। इसलिए अग्नि को लेकर के धौम्य महर्षि आगे चल रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर आंखों पर पट्टी बांध करके जा रहे थे। भीमसेन दोनों बहुओं को देखते हुए जा रहे थे। अर्जुन कंकड़ उछालते हुए जा रहे थे। नकुल ने अपने मुख पर काली पोत ली थी। उद्विग्न होकर के सहदेव चला था। द्रौपदी बाल खुले रख करके रोती हुई यहां से गई है। इसका अर्थ आप समझते हैं क्या महाराज? धृतराष्ट्र ने कहा नहीं। विदुर जी ने कहा सुन लो, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी थी क्योंकि भीतर क्रोध जग गया था और उस अवस्था में यदि वो किसी की ओर देखते तो वो जल जाता। भीमसेन दोनों बाहुओं की ओर भुजाओं की ओर देखते हुए चले थे मुझे कहते हुए कि 13 वर्ष पूर्ण होने दीजिए, मेरी ये भुजाएं काम करेगी और जो प्रतिज्ञाएं मैंने की है। ये मैं पूरी करके रहूंगा। कितने बालिश है ये कौरव, जरा देखो। वनवास के लिए जब पांडव चले उस समय ये दुशासन पांडवों के सामने खड़ा होकर के विशेष रूप से भीमसेन की ओर देख करके मुंह बना बना करके हंसता है और बोलता क्या है, बैल बैल गौर गौर। भीमसेन उसकी ओर देखते नहीं, अपने भुजाओं की ओर देखते हैं। विदुर जी ने कहा भीमसेन की प्रतिज्ञाएं आपको याद होगी महाराज। भीमसेन ने 2 प्रतिज्ञाएं की थी, इस पापी दुर्योधन की जंगा फोड़ करके इसको नष्ट करूंगा और पापी दुशासन के कंठ को छेद करके उसका रक्त निकालूंगा। उस रक्त से सने हुए बाल हाथों से ही द्रौपदी का वेणी बंधन करूंगा। धृतराष्ट्र डरे थे इन बातों से। अर्जुन कंकर उछालते चले, उसका अर्थ यह था जब कंकड़ों के समान संख्य मेरे बाण गांडीव से छूटेंगे, संसार में कौन है जो मेरा प्रतिकार कर सकेगा। धृतराष्ट्र कहा नहीं 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 विदुर, ये सब अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए। विदुर जी ने कहा राजन, हो चुकने के पश्चात आप सब ये बोल रहे हैं, ये सब होने से पहले मैंने आपको बतलाया था। कल ने देखा भगवती द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात शकुनी के द्वारा कही जाते ही सबकी प्रतिक्रियाएं क्या क्या थी, ये हमने कल विस्तार से देखा था। वास्तव में उसी क्षण धृतराष्ट्र को इन सबको वहां पर रोक देना चाहिए था। वायर अचानक इतना नहीं बढ़ जाता, उसको चेक करने के, उसको ब्रेक लगाने के अनेक स्थान बीच बीच में आते हैं। बाद में धृतराष्ट्र रोता है 13 वर्षों के पश्चात युद्ध के बाद में छाती पीट करके, लेकिन उसके बीज उसने इस दिन बोए हैं मुख्य रूप से। किसी भी बात को बहुत बड़ी होने से पहले ही विवेक से कैसे रोक दिया जाए, यह भान जिसके निर्माण हो गया वो धन्य है। विदुर जी ने सीधे कह दिया उक्तम पूर्वम जातमात्रे सुते ते मया यत्ते हितमासी तदानी विवर्गोयम धर्ममूलो नरेन्द्र राज्यं चेदं धर्म मूलं वदन्ति। महाराज, संसार की शांति धर्म के ऊपर निर्भर करती है और धर्म का पालन सब अन्य लोग करें इसकी अपेक्षा सबसे पहली आवश्यकता यह होती है कि सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति सर्वाधिक धर्म का पालन करे। सर्वदा हम लोगों को ड्यूटी कॉन्शियस होना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है। और ये जितने बड़े पद पर व्यक्ति बैठा होगा उतने बड़े पद पर उसकी ज्यादा उतनी जिम्मेदारी होती है। जिसके पास पद नहीं, ऐसा एकाध व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य से मुकर जाता है तो उसका उतना नुकसान भी और परिणाम भी नहीं होता, लेकिन पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा जब धर्म का पालन नहीं किया जाता है तो या तो पूरा परिवार, या तो पूरी संस्था, या तो पूरा राष्ट्र ही निरंतर अवनति की ओर जाता है। जरा दिल्ली से टैली करके देखो ये बातें, तो अपने आप ध्यान में आ जाएगा। मुझे कल किसी ने क्लिप भेजी थी, महात्मा गांधी जी ने 3 बंदर रखे, अब 3 गांधियों ने मिलकर के 1। ना मुझे पता नहीं है, स्मृति शक्ति कमजोर है। आखिर जिम्मेदारी उसकी होती जो पद के ऊपर है ध्यान रखना। इसलिए पदासीन व्यक्ति का यह सर्वदा कर्तव्य होता है कि अन्य लोगों को इतना प्रभावी निर्णय लेने के बारे में नहीं होने दिया जाए। अल्टीमेटली ऑल ब्लेम द चेयर, यही होता है। फिर किसके प्रभाव में आकर के मैंने कौन सा गलत निर्णय लिया या कोई निर्णय ही नहीं लिया, वो सारे लोग छूट जाएंगे और जो पद के ऊपर है वही पकड़ा जाता है। विदुर जी स्वयं इस बात को धर्मराज को समझाते हैं, गलती हो गई, धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि सिंहासन के ऊपर आप हैं। आप सोचो, और ये बात मैंने उसी समय आपको बताई, अरे विदुर शायद मैंने ठीक से सुना नहीं, अभी 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 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो तुमने कहा, इसका अभी उपाय क्या हो सकता है बताओ। धन्य विदुर जी। विदुर जी ने कहा, महाराज गलत रास्ते पर चलने के बाद में बीच में भी आप उससे रुक सकते हैं, बहुत बड़ी गलती तो कर बैठे हैं लेकिन अभी भी इस गलती को संवारा जा सकता है। बस केवल आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके मन में प्रामाणिकता होनी चाहिए। आप प्रामाणिकता से करना चाहेंगे तो सब कुछ होगा। अरे वही तो बताओ ना मुझे, मैं करना चाहता हूं। विदुर जी ने कहा, ठीक है, करना चाहेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आपने मुझसे कहा कि बताओ तो मंत्री के नाते बतलाना मेरा कर्तव्य है। सुनिए महाराज, और इतना सुंदर उपाय विदुर जी ने, इतना सर्वनाश होने के पश्चात भी विदुर जी ने जो उपाय बताया वो उपाय बहुत अच्छा था। विदुर जी ने कहा, दुशासनो या चतुभीमसेनो सभा मध्ये द्रुपदस्यात्मजांच युधिष्ठिरंतन परिशांतयस्व राज्ये चैनम स्थापयस्वाभिपूज्य। पुनः मैं आपको उस जन्मेजय के प्रश्न की ओर ले जाता हूं। जन्मेजय ने प्रश्न ये पूछा था कि इतना वैर बढ़ते समय किसी ने कहीं रोकने का प्रयास नहीं किया क्या? अब रोकने का प्रयास जिसके अधीन है उसकी प्रतिक्रिया देखिए। अरे मेरे ध्यान में नहीं आया, ये कहने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि विदुर जी ने सटीक मार्गदर्शन किया है। क्या कहा उन्होंने? विदुर जी ने कहा, महाराज यदि प्रामाणिकता से आप बहुत बड़ी युद्ध की अग्नि में हमारा वंश नष्ट हो जाए ये नहीं चाहते हो तो अभी संभल करके एक काम कर लो। क्या करो? एक दूत को भेज करके आप तुरंत धर्मराज युधिष्ठिर को वापस बुलाओ। कहो कि तुम्हारे भाइयों के साथ वापस लौट करके आओ। जीवन में एक प्रसंग है ऐसा जब धर्मराज युधिष्ठिर ने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, आप आज्ञा भेजिए अपने भाइयों को लेकर के वे दौड़ते आएंगे। एक मुद्दा, सभा का आयोजन करना और सभा मध्य सभा में दुःशासनो या चतु भीमसेनम, दुःशासन को सबके सामने भीमसेन और द्रौपदी की क्षमा मांगना चाहिए। इतना काम होते ही सब काम ठीक होगा और इसके पश्चात आप आज्ञा करना कि मैं आप पांचों भाइयों को आज्ञा कर रहा हूं, लौट जाइए इंद्रप्रस्थ, आपका राज्य स्वीकार कीजिए और जैसा राज्य आप पहले करते थे वैसा करने लग जाइए। आज भी एवरीथिंग कैन बी सॉफ्टन्ड। एक विशेष बात ध्यान में रखना, कभी भी अपनी भूल हो गई तो क्षमा मांगने से कतराना नहीं। हमारे जैन बंधुओं में एक पद्धति है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वे क्षमापना करते हैं। उस दिन मैं भी कुछ लोगों से क्षमापना करता हूं मैसेज भेज करके, क्योंकि पद्धति मुझे अच्छी लगती है। भूल हो गई, धर्मशास्त्र ये कहता है कि हृदय पूर्वक यदि उससे क्षमा याचना कर ली तो अब यह जिम्मेदारी सामने वाले व्यक्ति की हो जाती है कि वो क्षमा करे। अब वो पूरी क्षमा चाहे नहीं करेगा, अब ये अपने अपने अपराध अपनी अपनी भूल के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन हमारे द्वारा जो भी गलती हो गई उस गलती के नष्ट होने का तो आरंभ हो जाता है। मैंने अंग्रेजी में पूरी एक बड़ी किताब पढ़ी थी, से सॉरी से थैंक्स। थोड़ा हम लोगों को प्लीज कहना आना चाहिए, सॉरी कहना आना चाहिए, थैंक्स कहना आना चाहिए, उसकी फॉर्मेलिटी की बात नहीं। लेकिन गलती हो गई केवल शिष्टाचार की बात नहीं, धर्मशास्त्र के अनुसार क्षमा याचना कर ली गई तो गलती सौम्य हो जाती है, और सभा में क्षमा याचना करने पर तो वह गलती अत्यंत सौम्य हो जाएगी और सारा जनमत जो कौरवों के विरुद्ध हो गया है, अरे भाई भूल हो गई लेकिन उन्होंने क्षमा मांग ली ना, सबके सामने मांग ली ना, ये बात हमारे भी मन में आती है और पुनः राज्य दे दीजिए। कुछ लोगों तक, कुछ दिनों तक उनका मन थोड़ा जलता रहेगा लेकिन समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा। विदुर जी से बढ़िया सलाह कोई नहीं दे सकता था। क्या क्या, अरे सलाह देने वाला हो तो भी सुनने वाला होना चाहिए ना। धृतराष्ट्र ने क्या किया, जैसे ही विदुर जी ये बोले राष्ट्र चिढ़ गया, विदुर तुम्हारा सारा प्रेम उस पांडु के बेटों के साथ है, तुम्हें मेरे बेटों की महानता दिखती नहीं, उनसे तुम्हारा प्रेम ही नहीं है, मेरे दुःशासन को तुम क्षमा मांगने के लिए बोल रहे हो। और इतना तुम्हें प्रेम है उन पांडवों के साथ तो काय को यहां पर रहते हो, जाओ उन्हीं के पास, क्या लाभ हुआ बोलो। एक सुंदर वाक्य रामकथा में भी आता है और महाभारत में भी आता है, सर्वदा ये हमारे सामने होना चाहिए। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। चाटुकार लोग अनेक बार प्रशंसा करने वाले कितने भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपके हित की बात कहने वाला, चाहे वो कड़वी भी लगती होगी थोड़ी, वो मिलेगा नहीं। यदि वो मिल गया तो वह आपका परम कल्याण करेगा, यदि आपने उसको सुना। विदुर जी तो धृतराष्ट्र ने जैसे ऐसे कहा, जाओ ना, शांति से उठे, अपना धनुष धृतराष्ट्र के द्वार पर रख दिया। कहा, बड़े भैया, आपकी आज्ञा हो गई, मैं जा रहा हूं। और विदुर जी सीधे रथ में बैठे, चल दिए पांडवों की ओर। मौज की बात यह है, जब विदुर जी पांडवों के पास पहुंचे हैं ना, पांडवों ने दूर से आते हुए देखा, धर्मराज को डर लगा, कहीं ये वापिस द्यूत का निमंत्रण लेकर के तो नहीं आया है। दूध का जला छाछ भी फूंक करके पीता है। विदुर जी आए, पांडवों से मिले, थोड़ा वेग से चलेंगे अपन। सारी बात सुनने के पश्चात धर्मराज ने कहा, चाचा जी, आप आ गए ये तो बात ठीक है, हमारे साथ रहेंगे तो हमारा लाभ ही लाभ है, लेकिन मुझे चिंता ये होती है कि आप वहां नहीं होंगे हस्तिनापुर में, तो ताऊ जी का मन कैसे लगेगा। देखो, ये धर्मराज, जिस खलनायक ने इनका सारा जीवन बर्बाद किया, उसके लिए भी ये धर्मराज, सो मच केयर टेकिंग। आप यहां पर रहिए, आनंद से रहिए, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ताऊ जी आपको यहां रहने देंगे, उनका मन लगेगा नहीं। और वही हुआ, धर्मराज का यह आकलन सही था। विदुर जी चले गए, उस समय तो धृतराष्ट्र थोड़ा चिढ़ा हुआ था, जाने के पश्चात धृतराष्ट्र रोया, तुरंत सेवकों को बुलाया, कहा, हे, मैं विदुर के बिना नहीं रह सकता, उसकी बातें सुनकर के मुझे कितना अच्छा लगता है, जाओ उसको वापिस बुला करके लाओ। तो रथ लेकर के दूध चले। धर्मराज ने कहा, देखो चाचा जी, मैंने कहा था ना, ताऊ जी का मन लगेगा नहीं, पर कम से कम उस वृद्ध के पास एक तो भी सज्जन कोई होना चाहिए, आप जाइए। एक बात आपको बताता हूं, धर्मराज युधिष्ठिर ने द्यूत खेल करके गलती तो की ही की है, नो डाउट, इसका तो मैं समर्थन कर नहीं सकता, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर का अंतकरण वास्तव में गंगा जल जैसा निर्मल है। निर्मल अंतकरण के व्यक्ति से भी एक आध बार भूल हो जाती है, वो हो गई, उसके मन में पाप नहीं है, किसी के प्रति द्रोह नहीं है, गलती करने वालों के लिए भी नहीं है, गलती करने वालों के लिए भी उनके मन में यही है कि इसका कल्याण कैसे होगा। और यह उनकी जो धर्मनिष्ठा है, इतना पवित्र हृदय, इसका परिणाम यह है कि संतों में वे अत्यंत प्रिय है। ये तो संतों को एक राजा से प्रेम करने का क्या कारण है। धर्मराज युधिष्ठिर केवल राजा नहीं थे, वे निर्मल अंतकरण राजा थे। गलती कर दी, हो गई, विदुर जी जब लौट करके आए, इतना तो अवश्य है भाई कि धृतराष्ट्र ने सुंकमानीय विदुरम मूर्धान्याधाघ्राय चैवही क्षम्यतामिति चोवाच यदुक्तो सिममानघ। ला करके आए हुए विदुर ने जब धृतराष्ट्र को प्रणाम किया, बड़े भाई थे, धृतराष्ट्र ने उसको अपने पास खींच लिया और व्याकुल होकर के कहा, विदुर तुम्हारे सामने में क्या क्या बोल गया, तुम मुझे क्षमा कर दो। धृतराष्ट्र में ये बात है, इसलिए मैंने परसों एक बात कही थी, धृतराष्ट्र कुटिल होने पर भी, पुत्र मोह होने पर भी, पाप करने में भी क्या सीमा होनी चाहिए, गलत काम करने में भी क्या सीमा, इसको जानता है। पुत्र मोह से वो छूटता नहीं, लेकिन वो वैसा अतिरेकी नहीं है। दुर्योधन उस प्रकार का है कि टूटेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। धृतराष्ट्र थोड़ा इस प्रकार का है कि भाई समय पर झुक भी जाना चाहिए लेकिन टूटना नहीं चाहिए। एकाएक एक दिन पांचों पांडव और द्रौपदी अपराह्न की बेला में बैठे बैठे बातचीत कर रहे हैं। अब ये जो बातचीत चलती थी ना, इसका बड़ा लंबा ब्यौरा महाभारत में आता है। पांचों पांडवों में नकुल सहदेव कम बोलते हैं, अर्जुन ठीक ठाक बोलता है, बहुत बोलता है भीमसेन। भीमसेन और द्रौपदी ये दोनों तो धर्मराज युधिष्ठिर के ऊपर मानो तोपे दाग करके ही बात कर रहे हैं और वो सारी चर्चाएं दी है। इसमें इतने अच्छे अच्छे विषय आए चर्चा में। मनुष्य का जीवन धर्म प्रधान होना चाहिए कि अर्थ प्रधान होना चाहिए कि काम प्रधान होना चाहिए कि मोक्ष प्रधान होना चाहिए, इसमें अर्जुन का मत है मनुष्य का जीवन अर्थ प्रधान होना चाहिए, भीमसेन का मत है काम प्रधान जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है, काम पुरुषार्थ के बारे में सबसे अच्छा मसाला वहां पर मिलता है। भगवती द्रौपदी धर्मराज की गलती तो बताती है, लेकिन बड़ी विशेष बात यह है किसी भी प्रकार धर्मराज का मन टूट जाए ऐसा एक भी शब्द न बोलती है न किसी को बोलने देती। उत्साह तो बरकरार रहना चाहिए सबका, लेकिन मन टूट नहीं जाना चाहिए, ऐसी चर्चाएं चलती है। ऐसी कुछ चर्चा चली थी, भीमसेन ने कहा सारा जीवन बर्बाद कर दिया आपने, 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और अज्ञातवास में भी यदि पहचान लिए गए तो पुनः 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, क्या होगा पता नहीं। सच्ची बात तो यह है कि हमारा वनवास पूरा हो चुका है, 13 वर्ष पूरे हो गए। धर्मराज ने कहा कहां कहां हुए भाई, भीमसेन ने कहा धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि आपत्ति काल में 1 वर्ष का समाहार, 1 मास का समाहार 1 दिन में किया जाता है। हम लोग जो अपने घर में कोई मंगल कार्य करना होता है और किसी हमारे घर के वृद्ध व्यक्ति का देहावसान हो जाता है तो उसका 6 मासी तक का सारा कार्य कर लेते हैं कि नहीं बोलो, 6 महीने के पश्चात करने का श्राद्ध उसका हम लोग कब करते हैं, 15 दिन के भीतर ही कर लेते हैं। वहां पर धर्मशास्त्र का यह विधान है कि एक मास का समाहार एक दिन में हो गया, इसलिए यह किया जा सकता है। भीमसेन ने कहा जैसे एक मास का समाहार एक दिन में होता है वैसे एक वर्ष का समाहार भी एक दिन में हो सकता है। 13 दिन पूरे हो गए, चलो मैं तो गदा लेकर के जा रहा हूं। धर्मराज युधिष्ठिर क्षमा मांगते हैं, कहते हैं भीम अरे भैया मैंने गलती मान ली है ना मेरी, एक बार मैं भूल कर बैठा लेकिन अब पुनः वहां पर जो निश्चित हुआ है उसमें भूल हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। चारों पांडवों का एक विशेष स्वभाव है कि कितना भी वे आपस में विवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, जो कुछ करना धरना है कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली यदि धर्मराज ने कह दिया कि मैंने ये निर्णय किया है, ठीक है, एक भी पांडव धर्मराज के निर्णय के विपरीत जाने को कभी तैयार नहीं है। ये पांडवों का सबसे बड़ा एसेट है। अभी ऐसी चर्चा चली थी और इतने में क्या हुआ, सामने से कुछ रथ आए, रथ आए दूर खड़े हुए, पांडवों का ध्यान गया, सबके आंखों में आंसू आ गए, रथ में से भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथ सात्यकी और धृष्टद्युम्न को लाया है, ये भगवान के उम्दा सहायक हैं। जहां कृष्ण रहेंगे वहां सात्यकी रहेंगे। संपूर्ण महाभारत में आप इस बात को देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण की फ्रेंडशिप भी अपना एक अलग ही टॉपिक है। सात्यकी भगवान श्री कृष्ण के राजकीय मित्र हैं, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के फिलोसॉफर फ्रेंड हैं, उनके साथ भगवान तत्व की चर्चा करते हैं, सात्यकी के साथ राजनीति की चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सात्यकी उतरे, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न भी आए, भगवान जो कभी गंभीर नहीं होते थे आज गंभीर मुद्रा में आते हुए दिखाई दिए। अधोवदन पांडव द्वार में खड़ी द्रौपदी, अभिवाद्य कुरुश्रेष्ठम विषण के, संपूर्ण महाभारत में इस स्थान पर केवल भगवान का चेहरा विषण है ऐसा वर्णन आया। विषण केशव ब्रवी, दुख में डूबे हुए कृष्ण, कैसे दुख नहीं होता। अरे भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में जो यज्ञ हुआ था अभी कुछ महीनों पहले पूरा हुआ, प्रभु ने स्वयं जिन पांडवों को सारे संसार में सर्वोन्नत स्थान पर देखा, जिस धर्मराज को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अभिषेक किया गया, आज वे सारे कुटिया के बाहर पेड़ के नीचे वलकर धारण करके बैठे। आते ही कृष्ण का वाक्य क्या है, इज वेरी हॉट। आते ही भगवान ने कहा आप लोग मुंह उतार करके क्यों बैठे हैं, तैयारी करो, आपका वनवास पूरा होते ही पापी दुर्योधन, पापी दुशासन, इन सब के रक्त के लिए अब ये भूमि प्यासी हो गई, इतना पाप करने वाले जीवित नहीं रह सकते। ये प्रभु का पहला वाक्य है। मेरी ओर से आपने जो कुछ किया वो अच्छा तो नहीं किया। भगवान के शब्द सुनिए, अरे मुझे यदि पता होता कि आप लोग युद्ध खेलने के लिए जा रहे हैं तो मैं दौड़ करके आता, आपको युद्ध खेलने देता नहीं। भगवान ने इतना कहा, इसके ऊपर भी आप द्यूत खेलना चाहते तो मैं आपके हाथों को बांध देता। मैं द्यूत नहीं खेलने देता किसी को। भगवान श्री कृष्ण कभी भी द्यूत नहीं खेले। बलराम जी महाराज रोज खेलते थे, अब क्या करना। दैट इज लाइफ। योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, मुझे मेरे जीवन में मेरी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी है, इसी का विचार महापुरुष किया करते हैं। अब कृष्ण भगवान के तो काम से फुर्सत नहीं, बलराम जी के कोई काम ही नहीं, तो समय कैसे, टाइम पास कैसे करना। अरे भगवान की फुर्सत कितनी नहीं होगी, आप विचार कीजिए ना। 11 वर्ष की अवस्था में भगवान गोकुल से चले हैं, इतना प्रेम करने वाले गोकुल में भगवान वापस लौट करके कभी नहीं गए। बलराम जी महाराज जाते थे और फ्लाइंग विजिट नहीं करते थे, जाते थे तब दो दो तीन तीन महीना आराम से रहते थे। बातें ये थी, इनके कोई फुर्सत नहीं, उनके कोई काम नहीं। तो भगवान भी सोचते थे कि चलो डोमेस्टिक ड्यूटीज तो भी भैया ध्यान दे रहे, करो। भगवान स्वयं इसके आगे ये बोले, इतना होने पर भी शकुनी और दुर्योधन द्यूत के ऊपर अड़े रहते तो मैं उनका शिरच्छेद करता, लेकिन मैं द्यूत नहीं होने देता। ये तुमने बहुत गलत काम किया। अब सामने वाले को गलती करने के बाद तुमने गलत काम किया, गलत काम किया, 10 बार नहीं बतलाना चाहिए, एक बार बतला दिए बात पूरी हो गई, उसका मन टूटता है यदि वो अच्छा है। इसलिए भगवान ने केवल इतना कहकर के बाद में विषय को बदलते हुए कहा, ये तो सब ठीक है, लेकिन आज की स्थिति में मैं आपसे एक काम, एक बात कहने के लिए आया। भगवान की श्री मुखारविंद का इतना सुंदर यह वाक्य है, मैं मेरे जीवन का सिद्धांत आपको बतला रहा हूं। भगवान बोले, आपका मेरा संबंध, अब किसी भी स्थिति में रहेंगे तो मैं आपके साथ हूं, आपका मित्र मेरा मित्र है और आपका शत्रु मेरा शत्रु है, ये मेरे जीवन का सिद्धांत है। यस्त्वां द्वेष्टि समान द्वेष्टि यस्त्वामनु समामनु, ये इतना सुंदर वाक्य है, क्लियर कट। भगवान ने पांडवों के अंतकरण में विश्वास भर दिया, आप किसी भी स्थिति में मैं आपके साथ, आपका शत्रु मेरा शत्रु है, आपका मित्र मेरा मित्र है। ये तादात में एक कृष्ण का आलंबन जीवन में हमारे साथ है, ये भावना भी पांडवों के लिए बहुत बड़ी बात थी। भगवान पांडवों के साथ ये बात की है, द्रौपदी वहां पर नहीं थी, वो द्वार में खड़ी थी। स्वयं भगवान उसके पास गए, आज तक द्रौपदी इतना नहीं रोई इतना द्रौपदी कृष्ण के कंधे पर अपने मस्तक को रख करके रोई। किसके पास रोए, भगवती द्रौपदी का यहां का रुदन भीषण है, द्रौपदी के शब्द भी यहां पर अत्यंत विलक्षण है। भगवान ने जब द्रौपदी से कहा, कृष्ण शांत रहो, द्रौपदी ने कहा, केशव राज्य चला गया, इसका मुझे दुख नहीं। मैं जिस दिन इस घर में आई
उस दिन इन लोगों के पास कहां राज्य था। कुम्हार के घर पर निवास करने वाले अर्जुन का मैंने माल्यार्पण किया था, मुझे राज्य की अभिलाषा नहीं थी। किंतु केशव, महाराज द्रुपद की मैं कन्या, दृष्टद्युम्न की मैं बहन, दृष्टद्युम्नस्य भगिनी कथन्नु भार्या पार्थानाम तव कृष्ण सखी विभो, दृष्टद्युम्नस्य भगिनी सभाम कृष्येतया दृशी। इन मेरे पांचों प्रतापी पतिदेवों की मैं पत्नी और तुम्हारी मैं अत्यंत प्रिय सखी। बालों को पकड़ करके घसीट करके मुझे सभा में लाया गया। जीवत्सु पांडुपुत्रेषु, मेरे पांचों पतिदेव जीवित अवस्था में ये सारी बात देख रहे थे। मेरे ससुराल वाले, मेरे पियर वाले, कोई मेरे काम नहीं आए। बोलते बोलते द्रौपदी बोली, कौन काम आता है, तुम भी नहीं आए। नैव मे पतयः सन्ति न पुत्रा न च बांधवा न भ्रातरो न च पिता नैव त्वं मधुसूदन, नैव त्वं मधुसूदन। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को रोने दिया। देखो सारा ज्वालामुखी उसका आज प्रकट हुआ है। व्यक्ति को उसकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का भी थोड़ा सा समय मिलना चाहिए। कृष्ण गोविंद नारायण रे,
कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन,
कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण
स्त्रियोह्येवम् येषाम् क्रुद्धासि भामिनि यत्समर्थम् पाण्डवानाम् तत्करिष्यामि माशिचः। कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को थोड़ा रोने दिया। और बाद में कहा, बस इतना ही रो करके तुम्हारा काम पूरा हो गया। तुम्हारा तो रोना थोड़े दिनों का रहेगा द्रौपदी, इससे भी भीषण रुदन करना पड़ेगा कौरवों की पत्नियों को आजीवन। इनमें से कोई बचने वाला नहीं। पाप करने वाले और पाप का समर्थन करने वाले सब नष्ट होंगे। धृष्टद्युम्न ने कहा, उस पापी द्रोण को मैं मारूंगा। शिखंडी भीष्म को समाप्त करेंगे, दुर्योधन भीमसेन को मारेंगे, पापी कर्ण को तो अर्जुन ही खत्म करेगा। युद्ध होने में अभी 12 वर्ष है, प्लानिंग अभी से चला है। अपने भी देश का युद्ध होने में अभी समय है, लेकिन उस मोमेंटम में आ गए लोग। डू इट। भगवान ने सीधे सीधे युद्ध का परिणाम क्या क्या होगा ये सारा बता दिया है। और तुम चिंता नहीं करो, ये सब मैं करवा करके रहूंगा। अब भूल आपने की ही है तो कुछ समय तो आपको ऐसा काटना पड़ेगा, ये कर्म का परिणाम है। लेकिन फिर भी इससे आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण जहां भी जाते हैं ओझ भरते हैं, कृष्ण जहां भी जाते हैं आशा अंकुरित कर देते हैं, कृष्ण जहां भी जाते अपनी कृपा की छाया प्रदान करते।
आज पांडवों के मन को कुछ शांति मिली। पांडवों ने द्वैत वन में प्रवेश किया। वन में भी पांडव एक ही स्थान पर नहीं रहे हैं, कुछ दिनों तक द्वैत वन में रहने के पश्चात वे काम्यक वन में आते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के ऋषिमुनि आते ही रहते हैं। एक दिन भगवान वेदव्यास जी का आगमन हुआ। भगवान वेदव्यास जी को देखते ही पांडव अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए, साष्टांग प्रणाम सबने किया, वेद व्यास जी को स्थानापन्न किया। भगवान वेद व्यास जी सभी के हित चिंतक है, ऐसे मत मानना कि वे केवल पांडवों के पास जाते हैं, पांडवों के हित चिंतक है। वे तो सभी के लिए समान है। इसके पूर्व का ही एक प्रसंग बतला देता हूं। जब विदुर जी लौट करके जब विदुर जी चले गए हैं पांडवों के पास, उस समय पीछे घटना घटी। ये जो चंडाल चौकड़ी है, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण, इन सब ने मिलकर के एक विचार किया। विचार यह किया कि चलो बड़ा अच्छा हो गया, इन पांडवों को वन में जाना पड़ा, आखिर अपनी योजना सफल हो गई, हम लोगों को अभी एक काम कर देना चाहिए। काम क्या करना चाहिए? इन सब ने विचार किया, अभी के अभी जाकर के हम यदि पांडवों के ऊपर आक्रमण करते हैं तो पांडवों के पास इस समय सेना नहीं, पांडव हताश है, पांडव डूबे हैं शोक में, ऐसी स्थिति में पांडवों को कुचलना बहुत सरल रहेगा। बाद में तो पांडव भी स्वयं अपनी तैयारी करेंगे, उनकी किसी प्रकार की तैयारी होने से पहले ही हम जाकर के उनको खत्म कर दें। ये विचार किसका किसका है? वयंतु शस्त्राण्यादाय प्रथमास्थाय दंशिताः गच्छाम सहिताहंतुम पांडवान वनगोचरान ससौवलेयमानाय कर्ण दुःशासनौ तथा अब्रवीद वचनम राजा। दुर्योधन, दुशासन, गलती हो गई, दुशासन, शकुनी और कर्ण, इनके सामने दुर्योधन बोल रहा है, हम लोगों को अभी के अभी कुछ कर देनी चाहिए, तैयारी करो, सेना और शस्त्रों को लेकर के हम चलेंगे। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा शकुनी दुर्योधन से कहते हैं, अरे भांजे, अब तुम्हें बुद्धि आई? कर्ण ने भी बहुत बढ़िया कहा, दुशासन ने भी सराहा और तैयारी कर लिए, हस्तिनापुर से निकलने की तैयारी उनकी पूरी हो गई और सामने से भगवान वेदव्यास जी महाराज प्रकट हुए। वेदव्यास जी आ गए तो सबने प्रणाम किया, वेदव्यास जी उनसे कुछ नहीं बोले, सीधे धृतराष्ट्र के पास गए, कहा राजन, अब धृतराष्ट्र को भी अच्छा लगा व्यास जी आए। राजन, तुम्हारे बेटे क्या कर रहे हैं तुम्हें पता है क्या? नहीं। दुखी पांडवों के ऊपर अभी के अभी आक्रमण करके उनको खत्म करने की तैयारी करके शत्रुओं को लेकर के ये चले हैं। 13 वर्ष के पश्चात होने वाली मौत को आज ये अभी बुलाना चाहते हो तो ये काम करो, रोको राजन, ये अत्यंत बड़ा पाप है। एक तो आपने उनको इतना दुखी करके यहां से निकाला, अब वहां पर भी आप जाकर के उनका सफाया करना चाहते हैं, इसका घोर परिणाम तुम्हारे कुल को सहना पड़ेगा। धृतराष्ट्र ने कहा, दो चार गालियां दी, ये कभी मेरी बात सुनते ही नहीं है, मुझे इन बातों का पता नहीं है, मैं भी कुछ करता हूं। इतने में मैत्रेय महर्षि आते हुए दिखाई दिए। वेद व्यास जी ने कहा, मैं जा रहा हूं, मैत्रेय मुनि आ रहे हैं, मैत्रेय मुनि का अधिकार बहुत बड़ा है, इस बात को जानकर के उनकी ओर ध्यान देना। मैत्रेय मुनि ने जैसे ही प्रवेश किया वही बात बतलाई, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। कौरवों से कहा, बहुत वर्षों के पश्चात जो विनाश होना है उस विनाश को आज आप इतना जल्दी करवाना चाहते हैं क्या? अरे मत करो, क्या किया दुर्योधन ने? महाभारत अपने स्वभावों से कैसे होता है इसको देखिए। मनुष्य का स्वभाव उसके नाश का कारण बनता है। मैत्रेय मुनि ये सब बोल रहे हैं, दुर्योधन ने उनके सामने जंघा पर हाथ ठोक करके कहा और अपने भुजा की ओर देख करके संकेत किया, पराभव हमारा थोड़ा ही होने वाला है। मैत्रेय मुनि ने अपने सामने जंघा को ठोकती हुई जब देखा, कहा, पापी, किसके सामने तुम ये बोल रहे हो? तुम्हें नहीं कोई बचा सकता। शाप दे दिया, तद्विद्रोह संयुक्त युद्धम उत्पच्छते महत् तत्र भीमो गदाघातैस्तयोरुं देच्छते बलि। तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारे पाप के कारण युद्ध होगा, और जिस जंघा को तुमने मेरे सामने ठोका है पापी, भीमसेन उसी जंघा को तोड़ेगा। मैत्रेय मुनि अंतर्धान हो गए। ये सारे शब्द धृतराष्ट्र ने सुने, घबरा करके उसने सबको बुलाया, अब दो चार गालियां भी दी, सारा उनका जो षड्यंत्र रचा गया था वेदव्यास जी के परामर्श से और मैत्री जी के शाप के डर के कारण धृतराष्ट्र ने वो होने नहीं दिया। कहना मुझे ये था कि भगवान वेदव्यास जी महाराज जैसे ऋषि ये सर्वदा समदर्शी होते हैं, इनके कोई अपना कोई पराया नहीं होता है, ये सबके लिए समान परामर्शदाता। भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने वेदों को एक उपमा दी है, हिताहित दाविता दीपु। वेद क्या है? जो वेद है वही वेदव्यास है, वो है क्या? आपका कल्याण किसमें है और आपका अकल्याण किसमें है ये बतलाने वाला दीपक जैसे होता है। दीपक केवल रास्ता दिखाने का काम करता है, ये रास्ता चौपाटी जाता है, दूसरा उधर जाता है, दूसरा उधर जाता है, दीपक इतना ही दिखाता है। आखिर रास्ते को, रास्ते के गड्ढे को देख करके भी उसी में कोई कूदना ही चाहता है तो कौन रोक सकता है? शास्त्र ज्ञापक होते हैं, आपको बतला दिया, जिनके अंतकरण में सात्विकता होती है वे इन बातों को श्रद्धा के साथ स्वीकार करते कि भाई इन लोगों ने नहीं कहा है तो मुझे नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, ये कहने वाले भी लोग होते हैं और वो जो कुछ करते हैं उसका परिणाम भी वो भुगतते हैं। वेदव्यास जी को किस प्रकार का प्रतिसाद कौरवों ने दिया ये हमने देखा। वेदव्यास जी महाराज पांडवों के यहां पर आए, पांडवों ने उनका सम्मान किया। आजगाव महायोगी व्यास सत्यवती सुतः, भगवान वेदव्यास जी ने पांडवों से कहा भूल तो आप लोगों ने की ही है लेकिन फिर भी इस प्रकार भूल करने पर भी आपका स्थायी स्वभाव धर्मनिष्ठ होने के कारण अब पुनः आपको अपने विकास का ही विचार करना चाहिए। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये काल बहुत लंबा है। क्या करेंगे आप इस काल में? विवेकी पुरुष वो होता है जो परिस्थिति का सदुपयोग करता है। इस बात को ध्यान में रखना, परिस्थिति का निर्माण हमारे हाथ में नहीं होता है लेकिन परिस्थिति कैसी भी आ जाए उसका मैं सदुपयोग कैसे करूं ये विवेकी पुरुष जानता है। भगवान वेदव्यास जी ने कहा इतना खाली समय आपको और कभी जीवन में मिलने वाला ही नहीं था, राज्य में आप व्यस्त रहते, अब समय आप खाली हो गए, अब तो जो होना है 13 वर्ष के बाद होगा, तो 13 वर्षों तक आप क्या करने वाले हैं? कहना मुझे यह है, व्यास जी ने कहा 13 वर्षों के पश्चात संघर्ष तो होगा और उस संघर्ष में आप कभी भी अति विश्वास में मत जाना, ओवर कॉन्फिडेंस। दिल्ली के एक शहंशाह ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस पे चले गए, इंडिया शाइनिंग इंडिया शाइनिंग, दलदल में गए। ध्यान ये रखना आपके सामने भीष्म है, आपके सामने द्रोण है, आपके सामने अश्वत्थामा रहेगा, आपके सामने कर्ण रहेगा। दुर्योधन अपनी तैयारी कर ही रहा है इसलिए युद्ध आसान होगा, ऐसा अति विश्वास आप अपनी शक्ति का मत रखना। देखो ये बतलाने वाला भी कोई चाहिए, इसलिए आपको अपना पूरा समय दो बातों में लगाना चाहिए। एक बात, शत्रुओं का अभ्यास बंद नहीं करना, निरंतर अपने शत्रुओं का अभ्यास करते रहना। अनभ्यासे विषम विद्या, कोई कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि अपना अध्ययन छोड़ देता है तो उसका ज्ञान ही उसके लिए जहर के समान हो जाता है, समय पर याद नहीं आता, उसको पुनः पुनः रिफ्रेश करते ही रहना चाहिए। अब 12 साल के बाद में युद्ध होगा, अभी क्या करना है, तान करके सो जाओ, ऐसा करने वाला 12 वर्ष के बाद में एक भी बाण चला नहीं पाएगा। इसलिए आपको अपनी शस्त्रास्त्र विद्या को निरंतर अधिकाधिक अधिकाधिक तेजस्वी करते रहना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, मित्र व्यास जी ने कहा आखिर जो युद्ध होता है ना, युद्ध में केवल शस्त्र नहीं लड़ते, शस्त्रों के पीछे जो हाथ होते हैं वो लड़ते हैं। जिसकी कलाई में दम है उसका शस्त्र अच्छा, कलाई में दम होना चाहिए लेकिन हाथ नहीं लड़ता, उसके पीछे जो मन होता है हृदय वो लड़ता है। और ध्यान रखना केवल यह मन भी नहीं लड़ता, ये दोनों के भाग्यों की लड़ाई होती है। एक के पीछे सद्भाग्य खड़ा है, एक के पीछे दुर्भाग्य लगा हुआ है। यदि देवताओं की कृपा नहीं होगी और हमारा सद्भाग्य जागृत नहीं होगा तो सारी स्थितियां अनुकूल होने पर भी हम पराभूत हो सकते हैं। वेदव्यास जी ने कहा, इसलिए रोज आप देवताओं का अर्चन, मंत्रों का जप, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, इसका त्याग मत करना। तीर्थों में स्नान करना, संतों का दर्शन करना, देव मंत्रों का जप करना, होगी इतनी अर्चना करना, मनुष्य का भाग्योदय इससे होता है। इसलिए जैसी भी पूजा करना हम जानते हैं, पूजा छोड़ना नहीं जानने को। कोई भी प्रिय आपका मंत्र है, मंत्र का जप त्यागना नहीं, कुछ तो कुछ जप करना। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशय। वेदव्यास जी महाराज ने कहा फिर बाकी सब ठीक हो जाएगा। सांत्वनादि जाते समय उन्होंने कहा, आप सब में सर्वाधिक आशा अर्जुन से है, जिससे सर्वाधिक आशा है उसको सर्वाधिक परिश्रम करने चाहिए। इसलिए धर्मराज, मैं तुम्हें एक मंत्र सिखा करके जाता हूं। योग के समय पर तुम्हें यह मंत्र अर्जुन को बताना है। इसका नाम है प्रतिस्मृति विद्या। मैं तुम्हें बतलाऊंगा। तुम्हें अर्जुन को कब बतलाना है यह तुम्हारे ध्यान में अपने आप आ जाएगा। वो काम मैं करूंगा। उस समय उसे वह उपदेश कर देना। उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम अर्जुन को अपने भीतर से ही गाइडेंस मिलना आरंभ हो जाएगा और अर्जुन जाएगा भगवान शिव जी की आराधना करने के लिए। भगवान शिव जी से उसको पाशुपतास्त्र प्राप्त करना ही चाहिए। यदि वह पाशुपतास्त्र आपके पास रहेगा, आप अजेय होंगे। बिना आराधना, बिना परिश्रम के कुछ नहीं होगा। आशीर्वाद कहकर के वेद व्यास जी तो गए। बतलाना मुझे यह था कि वेद व्यास जी पांडवों के पक्षपाती नहीं है। अरे पूरा ही घराना उनका है, इसलिए उन्होंने कौरवों को भी जाकर के समझाया। अब वहां सब उद्दंड ही उद्दंड छोरे खड़े हैं और सारे उसके मामा से ट्रेंड है। शकुनी जी की आदतें सबको लगी है, कौन सुने। और यहां पर पांडव वेद व्यास जी की एक एक बात को बड़ी श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। हित किसमें है, व्यास जी ने उधर भी बतलाया, इधर भी बतलाया। अब सामने वाला अपना अनहित जान करके भी सामने गड्ढे में जाकर के गिरना चाहता हो तो व्यास जी क्या कर सकते हैं और कोई क्या कर सकता है। आखिर मनुष्य का स्वयं का उत्थान स्वापतन उसके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। ये महाभारत का सिद्धांत है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानमवसादयेत। लोग आपको सद्बुद्धि दे सकते हैं, लोग आपकी सहायता कर सकते हैं, पीपल कैन बी सपोर्टिव, लेकिन आखिर कर्म तो आपको करना है। चलो अर्जुन गए। कुछ दिनों के पश्चात प्रतिस्मृति विद्या को प्राप्त करके अर्जुन के ध्यान में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, और अर्जुन तपस्या के लिए चले गए। 12 वर्षों के वनवास के काल में 5 वर्षों तक अर्जुन पांडवों के साथ नहीं है। उन्होंने इन 5 वर्षों में क्या किया ये तो देखेंगे। लेकिन अर्जुन के जाने के पश्चात एक महात्मा का आगमन हुआ, उनका नाम है बृहदश्व ऋषि। अस्ति राजा मया कश्चित् अल्पभाग्यकरो भुवि भवता दृष्टपूर्वो वा श्रुतपूर्वोऽपि वा क्वचित्। ये पांडवों की और विशेष रूप से धर्मराज की विशेषता है कि बड़े बड़े निस्वार्थ तपस्वी महर्षि उनसे मिलने के लिए आते हैं और धर्मराज के साथ चर्चा सत्संग बड़े आदर के साथ करते हैं। आने वाले ऋषि मुनियों का ये पांडव सम्मान भी बड़ा अच्छा करते हैं, बड़े आदर के साथ उनसे व्यवहार करते हैं। बृहदश्व मुनि ने स्वागत का स्वीकार किया और चर्चा के अंतर्गत धर्मराज ने कहा, महाराज सब कुछ गंवा दिया मैंने, पता नहीं जीवन में पुनः हम उठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कैसे मैं जुआ खेला, मेरी दुर्बुद्धि इतनी कैसे जागृत हो गई। संसार में कोई भी राजा इतना तो पापी नहीं हुआ होगा, इतनी तो भूलें किसने की नहीं होगी। धर्मराज निराश होकर के बोल रहे, ये देख करके बृहदश्व मुनि ने कहा, राजन ऐसा सोचना ठीक नहीं है, ऐसा अनेकों के जीवन में होता है। राजन जुए में ही सब कुछ गंवाने वाले एक महान राजा की कथा तुम्हें पता है? अत्रते वर्णयिष्यामि, मैं तुम्हें बतलाता हूं। निषद देश में वीरसेन नाम के एक राजा रहे। महाराज वीरसेन के अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र हुए जिनका नाम था नल। नलो धर्मार्थ कोविदः, युवावस्था में ही नल को सिंहासन पर बैठा दिया गया। नल अपने कर्तव्यों को भरी भांति जानते हैं, अतीव सुंदर है, बड़े पुरुषार्थी हैं। उनके गुणों का वर्णन आए दिन सभी लोग करते रहते हैं। एक दिन महाराज नल की सभा में कुछ यायावर आए। यायावर शब्द का अर्थ समझ लीजिए, हमारे प्राचीन काल में कुछ ब्राह्मण लोग ऐसे हुआ करते थे। कुछ ब्राह्मण तो वैदिक हो जाते, कुछ शास्त्री पंडित हो जाते, कोई ज्योतिषी हो जाते, कोई धर्मोपदेशक हो जाते, ये सब तो हो जाते। लेकिन कुछ जो पढ़ते लिखते नहीं, अब उम्र भी बड़ी हो गई, पढ़े लिखे नहीं, तो फिर क्या करना? फिर अच्छी तरह भसम वसम लगा करके पंडित जी का रूप बना करके और इधर उधर घूमते रहते। लेकिन वे भी एक बढ़िया काम करते उस समय, क्या करते? नित्य प्रवास करते रहते। नित्य प्रवासी को कहते हैं यायावर। यहां से वहां गए, वहां से वहां गए, वहां से वहां गए, वहां से वहां गए। अच्छा, करते क्या थे? दो चार मंत्र सीख लेते थे। पंडित लोगों को ये मंत्र आती है, स्वस्ति इंद्र दशवाहा, कहीं पर भी। ऐसे दो चार आशीर्वाद के मंत्र सीख लेना, वेश अच्छा बनाना और जहां भी जाना जजमानों के घरों में मंत्रों का उच्चारण करना, बढ़िया आशीर्वचन देना और खूब बढ़िया बढ़िया मंगल शब्दों का उच्चारण करना। भोजन तो मिलता ही था जजमानों के यहां, थोड़ी जानकारी भी लेना, इनके घर में बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी हैं, ध्यान रखना, बस आशीर्वाद देना निकलना। आगे चल करके अपने आप ही अब इनके पास इतनी जानकारी इकट्ठी हो जाती कि इनके दिमाग में चलते रहता, उसके बेटे के लिए ये बेटी अच्छी है यहां की, उसके बेटे के लिए वो बेटी अच्छी है यहां की। ध्यान रखो, उस समय ये सारा इंटरकनेक्शन करने के लिए, इंटरैक्शन भी करने के लिए कोई एजेंसी थी नहीं। उस समय इन ब्राह्मणों का बहुत उपयोग था। अच्छा, उनको बड़ी व्यवस्थाएं लगती नहीं थी, धर्मशाला में मंदिर में कहीं सोना, जजमान के यहां पर कुछ खाना, बड़े प्रेम से खूब आशीर्वाद देना, जो भी दक्षिणा मिले उसमें संतोषी होना, अगले गांव निकल जाना। इसका परिणाम यह होता था कि उनके माध्यम से सभी जानकारियां सब स्थानों पर पहुंच जाती। अब आप इतना तो विचार कीजिए ना, ये पांडवों को जो द्रौपदी के बारे में जानकारी मिली है वो भी किससे मिली? ये ब्राह्मणों से ही मिली। द्रौपदी के स्वयंवर की जानकारी ब्राह्मणों से पाकर के ही पांडव वहां पर पहुंचे। तो दे वर्क, हमारे देश में हमारी प्राचीन पद्धतियों में कुछ एजेंसियां ऐसी थी। आज भी आप देखेंगे तीर्थों में आप जाते हैं और तीर्थों में आपको वहां के तीर्थ पंडित पुरोहित मिलते हैं, वो आपसे मिलने के लिए आते हैं। आपके पिताजी यहां पर आए थे, दादाजी आए थे, परदादाजी आए थे, उनके नाम ये थे, आप में से कितने लोगों को याद है बोलो, आपके घर में क्या रिकॉर्ड है बोलो, आपकी सारी जाति का रिकॉर्ड आपको इन ब्राह्मणों के पास मिलेगा। कितना बड़ा काम उन्होंने किया देखो। हम लोग तो आजकल इन लोगों का भी एक संगठन बना करके उसको भी मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उनकी सारी पुरानी जानकारी कंप्यूटराइज कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कर भी लिया, हमारे हरिद्वार के पंडित अब कंप्यूटराइज पंडित हुए सब। लेकिन आपको यदि कभी आपके पूर्वजों के बारे में कुछ जानने की इच्छा हो गई तो जानकारी कहां मिलेगी? आपके घर में भी उतनी नहीं मिलेगी जितनी वहां पर मिलेगी। 35 साल पहले की बात बताता हूं मैं, मेरा अनुभव। मैं कुरुक्षेत्र गया था और ऐसे पंडित आए। हमारे दादाजी बहुत जल्दी गुजर गए थे, लेकिन उन्होंने सब दिखाते दिखाते, आपके दादाजी इस तिथि को यहां पर आए थे, ये उनके हस्ताक्षर, उनके साथ इतने लोग, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। ये मेरा अनुभव नहीं है, आप में भी अनेक लोगों ने अनुभव लिया होगा। अच्छा, ऐसे पंडित ब्राह्मण कोई मिलते हैं, दक्षिणा देने में हम लोगों को कोताही नहीं करनी चाहिए, कोताही करते तो शर्म आनी चाहिए। होटलों में कितना खर्चा करते हैं हम लोग। अरे जिनकी परंपरा ने इतना संरक्षण किया, हमारे बाप दादों का, परदादों का, उनके पूर्वजों का, सबका। अच्छा, पता नहीं वो कैसे, उनकी लिखने की स्टाइल भी क्या है पता नहीं, वो खोते भी बहुत जल्दी है। हमें आदर होना चाहिए इन पद्धतियों का। अब ये कोई बड़े पढ़े लिखे वैदिक संहिता पाठी घनपाठी वनपाठी नहीं होते थे, जो जो काम कर सकता है वो वही काम अच्छा कर ले, यही अच्छा है ना। सब लोगों को इक्वल करने की इक्वालिटी में ब्यूटी नहीं है, ध्यान रखना। ये असमानता है ना, इज ब्यूटीफुल। कोई कैसा, कोई कैसा, सब एक ही रंग के फूल हो तो कैसा लगेगा, अलग अलग चाहिए, अपने अपने भाग्य। तो ये यायावर पंडित ब्राह्मण लोग ये वे आशीर्वाद बड़े ढंग से आशीर्वाद देते, स्तुति करते। जब कभी उनको राजाओं के सभा में जाने का अवसर मिलता ना, आहा हा हा, तब जाकर के राजा के सामने भाट जैसा वर्णन करते, आप क्या है। ये भी काम ब्राह्मण लोग पहले किया करते थे। जब बारात जाती थी ना, तब बारात के पंडित बेटी के बाप की स्तुति करते, और वहां के पंडित वरपक्ष की स्तुति करते, और कौन कितनी बढ़िया स्तुति करता है विद्वत्तापूर्ण, इसकी कंपटीशन होती। ये सारी अच्छी प्रथाएं थी, और घरधनी को भी पता नहीं होता था कि ब्याह का काम कैसे हो रहा है, सारे गांव वाले जुड़ जाते हैं। आपने सारी होटल सिस्टम लाई और चेक काट करके ब्याह करने की पद्धति निर्माण की, सामाजिकता का सत्यानाश किया। नो सोशल इंटरेक्शन नाउ, हर व्यक्ति अपने आप ही इंडिविजुअल बन गया। चलो दूसरी बात बोले, तो ऐसे कुछ यायावर पंडित नल के सभा में आए, और उन पंडितों ने नल के सामने स्तुति करते समय, नल वैसे भी गुणवान थे, रूपवान थे, शूरवीर थे, सब कुछ अच्छा था और युवा थे, तो उन्होंने सबने कहा, वाह वाह महाराज, आपका रूप, आपके गुण, आपकी कीर्ति, आपका शौर्य, सब कुछ अप्रतिम है, बस इस जीवन में एक कमी है। क्या कमी है? उस कमी की पूर्ति करना तो केवल तब होगा जब विदर्भ देश की राजकन्या दमयंती आपके यहां पर पत्नी बनकर के आवेगी। आप जैसे राजा के लिए तो दमयंती से बढ़कर के कोई योग्य सुयोग्य पत्नी हो नहीं सकती। और उन सब ने दमयंती का जो वर्णन किया है, अब पंडित लोग कवि लोग वर्णन करते हैं तो वो उनके ढंग से ही करते हैं, बढ़िया वर्णन। महाराज नल सुनते रहे, सुनते सुनते अपनी ही कल्पना से दमयंती का एक चित्र बनाते रहे। अब ऐसा जब ब्राह्मण लोग बोलते हैं ना, तो अपने आप ही उनको ज्यादा दक्षिणा देने का मन होता है, इसलिए ऐसा ही बोलना चाहिए। बढ़िया सम्मान करके उनको विदा किया, उनको तो विदा किया, लेकिन वो दमयंती इसके मन में बस गई। कुछ दिनों के पश्चात एक दिन की बात, प्रातःकाल की बेला, महाराज अपने राजभवन के समीप के उद्यान में टहल रहे थे, प्रातःकाल भ्रमण कर रहे थे। एकाएक महाराज ने देखा, ओ, उनको स्वयं की आंखों का विश्वास नहीं हुआ, ऐसे राजहंस उन्होंने देखे जिनके पंख स्वर्ण के थे। महाराज ने विचार किया, ये तो कभी न मिलने वाला मौका है। अपनी पगरखी को दूर ही उन्होंने छोड़ दिया और चुपचाप 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 उन हंसों के पीछे से जाते हुए समीप पहुंच गए, और निशंक भाव से वहां पर विहार करने वाले हंसों में से एक को उन्होंने पकड़ लिया। एक को पकड़ा, एक को पकड़ते बाकी उड़ करके भागे। तदिता रखा गेणे वेगड़ा ले पड़ा ले उपवन जल केली जे कराया मिलाले स्वजन गवस लाजो त्याज पाशी नसे तो कठिन समय येता कोण कामा सये। इस प्रकरण को लेकर के हमारी सभी प्रादेशिक भाषाओं में सुंदर काव्य लिखा गया है। सारे हंस उड़कर के दूर चले गए, ये तो उसके चंगुल में फंस गया। उस हंस ने कहा, राजन छोड़ दो मुझे। राजा ने कहा, कभी न मिलने वाले आप जैसे हंस को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? क्या करोगे राजन, मारोगे? राजा ने कहा बिल्कुल नहीं, वो मेरी वृत्ति नहीं है, लेकिन अब यहां के एक पिंजड़े में तुम्हारा निवास होगा, बढ़िया से बढ़िया पिंजड़ा बनेगा तुम्हारे लिए, तुम अद्भुत हो। राजहंस ने कहा मानसरोवर में विहार करने वाले हम हंस राजन, तुम्हारे यहां की वाटिका के पिंजड़े में मुझे क्यों रखते हो? ये मेरे जीवन का विनाश होगा। राजा ने कहा यह तो बात मैं मानूंगा नहीं, तुम्हें तो मेरी वाटिका में रहना होगा। हंस ने कहा अरे छोड़ दो राजन, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। राजा ने कहा क्या काम आओगे? राजन मैं तुम्हारा बहुत बड़ा काम करूंगा। तुम मेरा क्या काम करोगे भाई? हंस ने कहा तुम्हारे मन में जो दमयंती बसी है ना, उसके मन में मैं तुम्हें बसा दूंगा। राजा के तो हाथ ही ढीले पड़ गए। छोड़ दो राजन। राजा ने कहा सच्ची बात बताओ, करोगे ना? झूठ तो नहीं बोलोगे? हंस ने कहा मानसरोवर का हंस हूं राजन, इंडियन मिनिस्टर नहीं हूं। तुम्हें वचन देता हूं। राजा ने कहा जाओ। छूट गया वो हंस, बाकी हंस वहां पर रुके हुए थे, उनमें जाकर के वो मिल गया। सब हंसों ने राजा को धन्यवाद दिया। सब हंसों ने कहा अच्छा किया तुमने ये बात कहकर के, चलो हम सब लोग जाएंगे विदर्भ देश में। ते तो हंसा समुत्पत्य विदर्भान अगमस्तदा विदर्भ नगरीं गत्वा दमयन्त्यास्तदान्तिके। ये सारे हंस विदर्भ नगरी में आए और प्रातःकाल की बेला में वहां पर दमयंती अपनी सखियों के साथ जब वन में विहार कर रही थी, बाकी हंस तो दूर रुके देख रहे क्या हो रहा है। यह हंस जाकर के दमयंती के कुछ अंतर पर बैठ गया, दमयंती का ध्यान गया। दमयंती ने देखा अरे बड़ा विलक्षण हंस है और इतना पास में है, पकड़ सकती हूं। दो कदम दमयंती ने आगे बढ़ाए, हंस केवल दो तीन कदम आगे बढ़ा, दूर नहीं उड़ गया। दमयंती को निरंतर उसने ऐसे लगने दिया कि मैं पकड़ सकती हूं, मैं पकड़ सकती हूं। मैं दमयंती उसके पीछे पीछे धीरे से चली, बाकी सखियां उसकी ओर देख करके दमयंती ने कहा छेड़छाड़ मत करो, मुझे इसको पकड़ना है। ऐसे करते करते उस हंस ने दमयंती को दूर लाया और पीछे मुड़कर के कहा दमयंती मुझे पकड़ने का प्रयास नहीं करो, मैं तुम्हें एक खास बात बतलाने के लिए आया हूं। और उस हंस ने दमयंती के सामने नल का इतना सुंदर वर्णन किया, दमयंती तुम्हारा यह अद्भुत जीवन बस इसकी पूर्णता तो एक ही बात में है कि तुम महाराज नल की पत्नी हो जाओ। कैसे है महाराज नल? अब उस हंस ने जो वर्णन किया बड़ा सुंदर वर्णन किया। मैं चलूं? तुमसे केवल एक बात पूछना चाहता हूं दमयंती, अवसर मिल गया तो तुम नल का वर्णन करोगी ना? दमयंती ने कहा अब वे भी मेरे स्वप्न के राजा हैं, भगवान हमारी जोड़ी बना दे। हंस, तो मैं ये कह दूं महाराज को, वो कुछ बोली नहीं, मुस्कुरा करके उसने हां कह दिया। हंस ने अपनी उड़ान भरी। महाराज नल के पास आकर के हंस ने बतला दिया कि महाराज मैंने अपना काम कर दिया। हंस तो चले गए, नल के मन में दमयंती, दमयंती के मन में नल, बैठाने का काम हंस ने कर दिया। भक्त के मन में भगवान और भगवान के मन में भक्त को विराजमान करने का काम संत किया करते हैं। हंस का अर्थ परमहंस भी है, परमहंसों को यही करना होता है। भगवान वैशंपायन वर्णन करते हैं, अब जब से यह घटना घटी ना, दमयंती का मन कहीं लगे ही नहीं। वो दिन ब दिन थोड़ी दुबली भी होने लग गई, उदास रहने लग गई। उसकी मां ने पूछा, क्या हो गया इसको, अरे तुम्हें क्या दवा चाहिए? वो मराठी के कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, न लगे औषध मदला। अब यहां दवा से काम नहीं है, माताएं वैसे भी चालाक होती है। तो मां ने, दमयंती की मां ने अपने पति से कहना आरंभ किया, अजी आपको दिखता नहीं है क्या? सब माताएं यही शब्द बोलती है, बेटी इतनी बड़ी हो गई आपको दिखता नहीं है? चलो, महाराज विदर्भराज ने स्वयंवर का आयोजन किया, दमयंती का, विदर्भराज कन्या दमयंती का स्वयंवर होगा, इसके निमंत्रण सर्वत्र गए। महाराज नल को भी मिला, महाराज नल भी चले। अब महाराज नल जब आ रहे हैं स्वयंवर के लिए, तो बीच में उनको चार तेजस्वी पुरुष दिखे। तो साथ में प्लेन में प्रवास करने वाले एक दूसरे से पूछ लेते हैं, रेलवे में प्रवास करने वाले पूछ लेते हैं, बैठे बैठे कहां है, कहां जा रहे? तो उन चारों ने पूछा, कहां जा रहे हैं, कौन है आप? नल ने कहा, मैं निषद देश का राजा नल। हा, उन्होंने परिचय दिया, हम स्वर्ग के देवता हैं, शक्रोग्निर्वरुण हो यमः, इंद्र अग्नि वरुण और यम, विदर्भदेश की राजकन्या दमयंती का स्वयंवर होना है, वहां पर हम जा रहे हैं। क्या पता एकाध बार माला हमारे गले में आ जाए। नल ने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूं। तो ये सब कैंडिडेट्स हैं स्वयंवर के। बात करते करते इन चारों देवताओं ने नल से कहा, महाराज एक काम आप कर सकते हैं क्या? वहां तो बड़ी भीड़ होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन स्पेशली हम स्वर्ग से आ रहे हैं, इसकी सूचना दमयंती को पहले मिल जाए तो बहुत संभावना है कि वो वरमाला हमारे गले में डाले। अब ये बात दमयंती को पहले से तैयार, पहले से कह देनी चाहिए, ताकि उसका मन तैयार हो जाए। ये काम आप कर सकते हैं तो अच्छा होगा। और उसका मन क्या है इसका भी पता हमें चल जाए। आप जाएंगे? नल ने कहा, आप लोग कैसे हैं? दमयंती को उसके स्वयंवर से पहले मिलकर के ये बात मैं कैसे बता सकता हूं। देवताओं ने कहा आप चिंता मत करो, हम आपको अदृश्य होने की विद्या सिखा देते हैं। आप यहां से जैसे ही विदर्भराज समीप आएगा राज्य, आप अदृश्य हो जाएंगे। दमयंती के महल में उसके अंतपुर में प्रवेश करने तक आपको कोई नहीं देख सकेगा। जब आप चाहेंगे दमयंती के सामने खड़े होकर के, तब दमयंती आपको देख सकेगी। लेकिन इतना काम आप कीजिए। नल ने कहा आप चारों वहां पर दमयंती से विवाह करने के लिए जा रहे हैं, मैं भी तो जा रहा हूं। चारों ने कहा हमें पता है, अरे वो स्वतंत्र है ना, उसको जो करना है वो करेगी, आपको हमारे समाचार उसके तक पहुंचाने में क्या आपत्ति है। नल ने कहा ये मैं कर सकता हूं, नहीं हमें आशा है आपसे, आप सत्य वक्ता है। नल ने कहा यह मैं कर सकता हूं, आपके समाचार में वहां पहुंचा दूंगा, वहां के समाचार में आपको पहुंचा दूंगा। ठीक, नल सीधे दमयंती के अंतपुर में पहुंच गए। अंतपुर में जाने के पश्चात नल प्रकट हुए, दमयंती अकेली थी। जैसे ही निषदराज नल ने अपना परिचय दिया, मैं नल, दमयंती ने नल को देखा, आप कैसे आ गए यहां पर। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पूछा आप आ कैसे गए। नल ने सारी बात बता दी, मैं देवताओं के समाचार लेकर के आया हूं, इंद्र अग्नि यम और वरुण चारों देवता कल तुम्हारे स्वयंवर में आ रहे हैं और उनकी इच्छा है कि उनमें से तुम्हें किसी एक को चुनकर के वरमाला पहनानी। दमयंती ने कहा आप जाकर के उनसे इतना बतला दीजिए, मैंने अपना मन महाराज नल के अर्पण किया है, इसलिए मैं अन्य किसी देवता को भी माल्यार्पण नहीं कर सकती हूं। मैं नल की पत्नी होना चाहती हूं, मैं नल को ही माल्यार्पण करूंगी, मेरी ओर से इतने समाचार आप दे दीजिए। प्रामाणिकता से महाराज नल ने लौट करके चारों देवताओं के सामने ये बात बतला दी कि मैं गया, हम दोनों मिले, बातचीत किए, आपके समाचार मैंने दे दिए, उसने समाचार दिया है कि मैं माल्यार्पण नल को करने वाली हूं। चारों देवताओं ने कहा यह सब जो हो रहा था हम देख रहे थे। देवता परीक्षा लेते हैं, कोई भी बड़ा कार्य आपको सौंपने से पहले अदृश्य शक्तियां आपकी परीक्षा लेती हैं, उसके बिना आपको चूज नहीं किया जा सकता महान कार्य के लिए। जो देवता नल को अंतर्धान होने की विद्या सिखा सकते हैं, दे सकते हैं, वे स्वयं भी तो वहां पर पहुंच करके अंतर्धान अवस्था में दमयंती को बोल सकते हैं ना, लेकिन वो करना नहीं चाहते थे। ये नल की परीक्षा है, ये नल की भी परीक्षा है, ये दमयंती की भी परीक्षा है। देवताओं को लौकिक व्यवहारों में क्या रस है। जैसे ही नल ने प्रामाणिकता के साथ आकर के ये कह दिया, वरुण ने कहा मैं आपको सिद्धि प्रदान करता हूं, जहां पर आप हाथ आगे करेंगे वहां पानी बरसेगा। अग्नि ने कहा अग्नि के कोई कणिका के भी न होने पर आप केवल हाथ आगे करेंगे और मेरा स्मरण करेंगे, अपने आप अग्नि का प्राकट्य होगा। नल को अनेक सिद्धियां मिल गई, देवताओं की आज्ञा पालन, देवताओं की अर्चना, देवताओं की आराधना करने वालों को सिद्धियां अपने आप प्राप्त होती है। ये सिद्धियां अनुकूलता निर्माण करती है। अब दूसरे दिन क्या हुआ विस्तार नहीं करता हूं। लेकिन आश्चर्य कितना तन्मय होकर के सुन रहे आप लोग। तो अब दूसरे दिन स्वयंवर के मंडप में क्या हुआ, ये चारों देवता वहां पर उपस्थित है और नल के बगल में ही बैठे हैं और सभी ने अपना रूप नल का ही रूप बना लिया है। दमयंती ने कहा था मैं नल के माल्यार्पण करूंगी, चारों देवताओं ने अपना रूप नल जैसा बना लिया, बैठ गए। अब वरमाला लेकर के दमयंती आई, उसने नल को पहले दिन देखा था इसलिए नल कैसे दिखते उसको पता है और वो नल को माल्यार्पण करने वाली है। आकर के देखती है तो पांच नल बैठे हैं। अब आगे चक्कर, खड़ी खड़ी दमयंती, देखो जिसका जीवन शुद्ध है, जिसको अपने सद्गुरु में विश्वास है और जो प्रामाणिकता से अपनी कुलदेवता को स्मरण करके कोई प्रार्थना करता है उसकी बुद्धि में प्रस्फुरण होता है। भगवती दमयंती ने कुछ क्षणों के लिए नेत्रों को मूंद लिया, अपने कुल देवता को याद किया और एकाएक बचपन में सुनी हुई कुछ बातें उसको याद आ गई। मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनंच, भगवान भगवद्गीता में कहते अर्जुन किसी की बुद्धि को चलाना, किसी की स्मरण शक्ति को जागृत करना और किसी के ज्ञान को ढक देना, ये सब मैं ही करता हूं, ये मुझसे होता है। ज्ञानिनाम अपिचेतांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। वो जगदम्बा ऐसी है उत्तमोत्तम लोगों की बुद्धि पर भी पर्दा डाल देती है जब वो उनके अनुकूल नहीं होती है, और जब अनुकूल होती है तो किसी सामान्य की बुद्धि का भी पर्दा उठा लेती है। इसलिए जीवन में आराधना करते रहना, रोज आराधना करना, कुछ न कुछ आराधना, कुछ न कुछ पूजा, कुछ न कुछ जप, कुछ न कुछ दर्शन, कुछ न कुछ दान, ये रोज 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 होना चाहिए। रोज क्यों होना चाहिए, कभी कभी करने में क्या आपत्ति है? भोजन रोज करते हैं कि कभी कभी करते हैं? चाय रोज पीते हैं कि कभी कभी पीते हैं? जब ये सब रोज करते हैं तो ये भी रोज करना चाहिए। जैसे शरीर का पोषण अन्न से और पेयों से रोज होता है, उसी प्रकार हमारे भाग्य का भी पोषण रोज होना चाहिए, क्योंकि अपना डेबिट बैलेंस भी बढ़ता जाता है। जैसे पुण्य हम प्राप्त करते हैं वैसे हमारे दोषों के कारण हमारे पुण्यों का क्षरण भी होता है, तो सारा बैलेंस रोज ठीक ठाक कौन करेगा? इसलिए रोज करना। दमयंती को एकदम, उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई आपत्ति का प्रसंग सामने आएगा। बचपन में कभी सुनी हुई बातें एकदम याद आ गई, बूढ़े बड़ेरों से सुना था उसने कि देवता कभी भी भूमि का स्पर्श नहीं करते हैं, एक देवताओं की परछाई नहीं होती है, दो देवताओं की पलकें नहीं झपकती है, तीन और देवताओं को जब माल्यार्पण किया जाता है तो उनकी माला के फूल कभी भी सूखते नहीं, मुरझाते नहीं। दमयंती ने नेत्रों को खोल करके देखा, उन पांचों में केवल एक व्यक्ति ऐसा था जो आसन पर जमीन से टिका हुआ था, उसी के गले की माला थोड़ी मुरझाई हुई थी। चारों जो थे उनकी परछाई नहीं थी, उसकी अकेले की परछाई है। और दमयंती ने धीरे से देखा, इन चारों की पलकें भी नहीं झपक रही थी, एक की ही पलकें झपक रही थी। कुलदेवता का स्मरण किया और दमयंती ने उसके गले में माल्यार्पण कर दिया। लक्ष्मी नारायण भगवान की। देवता प्रसन्न हो गए, देवता प्रसन्न हुए, आनंद पूर्वक वर वधू को आशीर्वाद देकर के देवता वहां से चले। विवाह तो आनंद से हो गया। अब जब देवता जा रहे थे ना, तब सामने से एक काला कलूटा व्यक्ति जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ आ रहा था। तो देवताओं ने पूछा, कहां जा रहे हो भाई? वो था कली। तो कली ने कहा, मैं दमयंती के ब्याह में। अरे चारों देवताओं ने कहा, वो तो हो चुका, ये कली का काम ऐसा है, कभी समय पर पहुंचना नहीं, प्रमाद आलस्य और निद्रा से ग्रस्त लोग पड़े करेंगे देखेंगे, ये सारे कली के दुर्गुण हैं। कलिशयानो भवति, देखो हमारे ही जीवन में कली कहां होता है। जब पड़े रहने को मन करता है ना, समझना कली आया। कलिशयानो भवति संजिहान अस्तु द्वापरः, जब जग गया और उठने की तैयारी करने का द्वापर युग में आया है। उत्तिष्ठं स्त्रेता भवति, उठ करके खड़ा हो गया, समझना त्रेता युग में आ गया। कृत संपद्यते चरण, और अपने काम को करने लग गया, ये सत्ययुगी आदमी है। जो जितना अपने दिन भर में काम में समय बिताता है, उतना सत्ययुग में होता है। और खर्राटे भरता हुआ जितना सोता है ना, कली, तो कली आया। देवताओं ने कहा, अरे वो तो ब्याह हो गया, कैसे हो गया, मेरे बिना कैसे हो गया? अब देखो, देरी से ये आया, फिर भी दोषारोपण दूसरे। अच्छा ये बताओ, देव दमयंती ने किसका वरण किया? तो कहा, निषदराज नल का किया, दिखाता हूं उसको, अब मजा चखाता हूं। बिना कारण का, ये कली के लोग, ये कली की वृत्ति। और ये कली पीछे पड़ गया निषदराज नल के। कली उसके देह में प्रवेश करना चाहता है। कली को प्रवेश करने का मौका 12 वर्षों तक नहीं मिला। कली जिसके भीतर प्रवेश करता है, उससे गलतियां करवाता है, उससे गलत बुलवाता है और उसके ऊपर पूरी आफत लाता है। 12 वर्षों तक कली को प्रवेश करने का मौका नहीं मिला। क्यों? महाराज नल का सारा जीवन धार्मिक दिनचर्या से आबद्ध था। शौच स्नान समय से करके देव पूजा में लगते थे, शुद्ध दिनचर्या थी। जिनकी दिनचर्या शुद्ध होती है, उनके जीवन में कली को प्रवेश करने का अवसर जल्दी नहीं मिलता है। 12 वर्षों तक कली प्रवेश नहीं कर पाया। 12 वर्षों के पश्चात एक घटना घटी। एक दिन जल्दबाजी में, वर्णन ऐसा है, अथास्य द्वादशे वर्षे ददर्श कलिरंतरम कृत्वा मूत्र उपस्पृश्य संध्यामनवास्य नहीं सदा। कली को प्रवेश करने के लिए एक छिद्र मिल गया। जल्दबाजी में संध्या वंदन के लिए बैठने से पूर्व लघुशंका करने के पश्चात महाराज नल ने हाथ पग तो धोए, लेकिन पग धोते समय पग का एक अंगूठा धुला नहीं, जल्दबाजी। कली ने वहीं से प्रवेश कर लिया उनके देह में। इसका अर्थ क्या है? बहुत अच्छा काम करने वाला भी व्यक्ति यदि एकाध काम की ओर ध्यान नहीं देता है और असावधान रह जाता है, उसके भीतर संकट प्रवेश कर जाते हैं। महाभारत ने धर्म का सार समझा है सावधानता को। महाराज नल थोड़े से असावधान रहे, कली ने प्रवेश किया। कली के प्रवेश से उनकी बुद्धि में भी थोड़ा अब अलग ढंग का विचार आने लग गया। इतने में उनके भाई, जल्दी चलता हूं अब, पुष्कर ने, नल के एक भाई का नाम है पुष्कर, पुष्कर ने आकर के द्यूत के लिए चुनौती दी। महाराज नल जीवन में कभी द्यूत के फांसों को छुए नहीं थे, उनके भी कुतूहल हुआ। अरे क्या है, इतने सब करते हैं, मैंने कभी ये देखा ही नहीं, करके तो देखें। विषयों के बारे में और पाप के बारे में कुतूहल जागृत होना भी हमारे जीवन के नाश की ओर चलने की शुरुआत है। प्राप्ते ही पुरुषे इंद्रिय सार्वनी यदि कौतुके जस्ट क्यूरियोसिटी भी, आदमी यदि पापाचरण की ओर मुड़ता है वो अपना नाश करने की ओर चला है। कली के भाई, नल के भाई पुष्कर ने जब चुनौती दी दूध खेलने के लिए, नल बैठ गए दूध खेलने के लिए, हारना आरंभ किए। दमयंती ने देखा मेरा पति ऐसे कभी नहीं करता था, इनको क्या हो गया? दमयंती ने समझाया, मैंने कहा तुझ चुप रहो, इसमें क्या हो गया, सब करते हैं, राजाओं का काम है। आदमी जब गलती करना आरंभ करता है ना, तो गलती का समर्थन करने के बहाने भी ढूंढ निकालता है। नल ने भाई किया, दमयंती को धक्का लगा। अच्छा, ये द्यूत एक दिन का नहीं था, ये द्यूत लगभग महीना भर चला है, लेकिन जब ये 5-6 दिन तक चला और पति सुनने की मनस्थिति में नहीं है, यह बात दमयंती के ध्यान में आई। देखो कितनी सावधान पत्नी है दमयंती। दमयंती ने सबसे पहला विचार ये किया, जब इनकी बुद्धि तो हो गई भ्रष्ट किसी कारण से कम इनके पुत्र और कन्या के सामने तो भी इनका द्यूत नहीं चलना चाहिए। बेटे बेटी के संस्कार बचाने के लिए ऐसे बाप से उनको थोड़ा दूर करना आवश्यक है। ऐसा सोच करके दमयंती ने क्या किया, उसका एक विश्वसनीय सारथी था, उसका नाम वार्ष्णेय। कहा, वार्ष्णेय तुम एक काम करो, ये मेरा बेटा इंद्रसेन और ये बेटी इंद्रसेना, इन दोनों को यहां से ले जा करके तुम ननिहाल पहुंचा दो। जब तक मैं नहीं कहूं तब तक उनको यहां पर नहीं लाना। कम से कम अपने माता पिता के पाप बच्चों को दिखने नहीं चाहिए। ये उनके जीवन के लिए बड़ा आघात होता है। दमयंती ने इतना काम किया। ततस्तुयाते वार्ष्णेय पुण्यश्लोकस्य दिव्यतः पुष्करे नृतम राज्यम चान्यद्वत्सु किंचन। द्यूत थमा नहीं, पुष्कर ने सारा राज्य जीत लिया। महाराज जल को उनके राजमहल से केवल एक वस्त्र धारण की हुई अवस्था में निकलना पड़ा। पुष्कर ने राजधानी में घोषणा कर दी, जो कोई महाराज नल की सहायता करेगा वो राजा की ओर से दंडित होगा। वे अब यहां के राजा नहीं, यहां के नागरिक नहीं, उनको इस देश से बाहर निकाल दिया गया है, अपराधी है। जहां महाराज नल एक महान राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे थे, वहीं पर अब उनको सड़क के ऊपर एक वस्त्र धारण की हुई अवस्था में बिना पगरखी के अपनी पत्नी महारानी के साथ में जाना पड़ रहा है। लोग सहायता नहीं कर सकते हैं, भूख लगी है। आगे वन की ओर चले, भूख बहुत सताने लगी, खाने के लिए कुछ नहीं। एक पौधे के ऊपर कुछ पंछी बैठे थे। महाराज नल ने विचार किया, कम से कम इन पंछियों में से एकाध को मैं पकड़ लूं, उसको भून करके खाऊं, कैसे तो भी मेरी क्षुधा मिटाऊं, इनको पकड़ूं कैसे। महाराज नल ने विचार किया, एक ही उपाय किया जा सकता है। पहना हुआ वस्त्र उन्होंने उतार दिया, केवल कौपीन लगाए खड़े हैं और उस धोती को उन पंछियों के ऊपर जाल के समान डालना चाहा। सब नहीं आवे तो कम से कम एक दो पंछी तो भी उसमें अटक जाए, ऐसा सोच करके जाल के समान उस धोती को जैसे ही डाला, वे सारे के सारे पंछी उड़े धोती सहित। ऊपर उड़ते हुए कहने लगे, महाराज अपने हाथ में जिन फांसों को लेकर के आपने द्यूत में फेंका था वे हम हैं, हमें हाथ में लेकर के फेंकने वाले को हम मजा चखाते हैं, फेरे ना द्यूत तब भुगतो। महाराज डर देखते रह गए, केवल कौपीन, कोई वस्त्र नहीं रहा उनके पास। पछतावा बहुत हुआ, दमयंती फिर भी उनके साथ है। रात्रि के समय एक पुरानी धर्मशाला का आश्रय लेकर के पड़े। नल को बहुत पछतावा हुआ, रोए नल, क्या किया मैंने, लेकिन अब मैं क्या करूं। एक पुराना शस्त्र वहां पर पड़ा था, सोई हुई दमयंती की आधी साड़ी को नल ने फाड़ लिया और उसी को अपने कमर में लपेट करके नल ने उस स्थान का त्याग कर दिया। नल तो चले गए, दमयंती ने जगने के बाद देखा पति है नहीं, साड़ी आधी फटी हुई है। वो समझ गई कि उद्विग्नता के कारण, दुख के कारण, आप लोगों की भाषा में बोलूं तो डिप्रेशन के कारण, नल निराश होकर के चले गए। रोती हुई अब द्रौपदी वह दमयंती जाए कहां, विदर्भ देश की ओर वो चली। मार्ग वन में से जाता था, साथ में कोई नहीं, लेकिन एक व्यापारियों का झुंड जा रहा था, उनके साथ वो होली। संजोग की घटना ऐसी, उसी रात्रि में व्यापारियों का झुंड जहां पर रुका था, वन में से हाथियों का झुंड एक दौड़ता हुआ आया, उनमें से बहुत सारे लोगों को कुचलते हुए भागा, बहुत नुकसान हुआ। व्यापारियों ने विचार किया, ये सारा इसके कारण हुआ है, यह अच्छी स्त्री नहीं है, उन्होंने उसको निकाल दिया। अकेली अब वन के मध्य में रास्ता मिले उधर से जा रही है, इतने में एक अजगर ने दमयंती को निगलना चाहा, वो चीखी, एक वनवासी ने आकर के उसको छुड़ाया तो सही, लेकिन उस वनवासी ने दमयंती को अपनी पत्नी के रूप में घसीट करके ले जाना चाहा, क्रुद्ध होकर के दमयंती ने उसकी ओर देखा, वो जल करके वहीं पर गिर गया। रोती बिलकती दमयंती दक्षिण की ओर चली। एक देश में शहर में आकर के वह पहुंचती है। बड़ी विचित्र बात ये थी, अपक्रांते नले राजन राजमाता ब्रवीदार्थ भैमीमार्थ स्वराम स्वयं। राजा सुबाहु का वह राज्य है, छोटे छोटे बालक और दमयंती को टंकड़ मारते हुए पागल पगली 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 कर रहे हैं। अब उसके बालों में तेल नहीं, आधी कटी हुई फटी हुई साड़ी धारण की हुई, पेट में ठीक से अन्न नहीं, इतने दिनों से दर-दर भटक रही है, और इन बालकों ने पगली पगली करके उसको और छलना आरंभ किया। राजा की मां के राजा की माता ने देखा, खानदानी राजमाता थी, उसके ध्यान में आया ये भले घर की स्त्री है, आपत्तिग्रस्त है, सेविका को भेज करके उसको बुलाया। कहा, तुम कौन हो? रोती हुई दमयंती ने कहा, मेरा परिचय इस समय देना मुझे ठीक नहीं लगता, बहुत आपत्तिग्रस्त महिला हूं, बड़ी अच्छी थी वो राजमाता। उसने कहा, बिटिया तुम यहां पर रहो, मेरी बेटी के साथ रहो, मैं तुम्हें पूछूंगी भी नहीं, जो काम कर सकती हो काम करो, प्रेम से यहां पर अपने दिन काटो। दमयंती ने कहा, महारानी जी मैं रहूंगी, काम भी करूंगी, लेकिन मैं किसी की जूठन नहीं खा सकती और मैं किसी पर पुरुष की सेवा नहीं कर सकती। इन दो बातों को छोड़ करके आप जो कहेगी वो सब मैं कर सकती। राजमाता के ध्यान में आया ये कोई कुलीन है, अच्छे घराने की कन्या है। ठीक है बेटा, ये तो तुम्हें करना ही नहीं है, तुम जब मैंने तुमसे ये कहा कि मेरी बेटी के साथ रहो तो इसका अर्थ क्या है? दमयंती वहां पर अपने दिन काट रही है। उधर महाराज नल का क्या हुआ? रोते बिलकते नल वन में से आगे बढ़ रहे थे, एकाएक उन्होंने एक शब्द सुना, बचाओ बचाओ। वन में आग लगी थी और शब्द जहां से आ रहा था, एक छोटा सा सर्प कुंडली मार करके बैठा हुआ था। कहा, राजन मुझे यहां से उठाओ बचाओ। राजा ने जैसे उसको उठाया, लेकर के चलो और बोलते चलो, अंक गिनते चलो। राजा ने जैसे ही एक दो तीन चार दस कहा, दस कहते ही उसने राजा को दंश किया। इतना सुंदर यह नल उसी समय बौना काला कलूटा अत्यंत कुरूप हो गया। उसने कहा, तुमने ये क्या किया? उसने कहा, सुनो मैंने भला किया, ये दिन तुम्हारे दब करके रहने के हैं, छिप करके रहने के हैं, मेरा नाम कर्कोटक है, कर्कोटकस्य नागस्य दमयंत्या नलस्य च। ये सभी हमारे प्रातस्मरणीय है। और देखो, जब तुम्हें अपना पूर्ण रूप चाहिए ऐसा लगेगा, इस वस्त्र को अपने मस्तक पर धारण करते ही तुम्हारा पूर्ण रूप में प्राप्त हो जाएगा। इस समय तुम जाओ अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास, उसके अश्ववाहक के रूप में काम करना आरंभ करो, भविष्य तुम्हारा अच्छा है, कुछ दिन और काटने हैं, नाम तुम्हारा अब बाहुक रहेगा, नामांतर भी कर लो। बाहू के नाम से अपने काले कलूटे नाते से रूप में महाराज नल अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास आए और अश्वों का मैं अत्यंत अच्छा ज्ञाता हूं यह कहकर के वहां पर चाकरी में लग गए। महाराज नल के ऊपर दमयंती के ऊपर आई हुई आपत्ति का सारा पता पियर के लोगों को लगा। महाराज विदर्भराज ने पता नहीं मेरी कन्या कहां है, मेरे जवाई कहां है, कैसे उनका पता चले। वही बात उन यायावर ब्राह्मणों से ही पूछा और काम दे दिया कि महाराज इतना काम करो कहीं खोजो। उनमें से एक ब्राह्मण उस सुबाहु राजा की राजधानी के राजमहल में आकर के पहुंचा और राजमाता से वो जब बातचीत कर रहा था उस समय दमयंती वहां पर आई। उसने दमयंती को पहचान लिया क्योंकि वो उसी गांव के ब्राह्मण थे, सब राजकुमारी को देखा हुआ था। तो ब्राह्मण ने राजमाता से पूछा ये कौन है। कहा पता नहीं भैया कौन है, कोई दुखी स्त्री है, बहुत संभावना यह है कि यह दमयंती है। उसके माथे पर लगा हुआ कुमकुम पोंछ करके देखा जा सकता है, यदि वहां पर तिल है तो यह दमयंती है। राजमाता ने कहा अरे मैं तो उसकी मौसी हूं, दमयंती खो गई। उसने उस कन्या को बुलाया तुम कौन हो। वो कुछ नहीं बोली। राजमाता ने आगे बढ़कर के जैसे ही उसके कपाल के कुमकुम को अपने हाथ से पोंछ दिया और तिल देखा तुम दमयंती हो। दमयंती चरणों में गिर करके रोने लगी। उस राजमाता ने कहा बिटिया तुमने क्या किया, मैं तुम्हारी मौसी हूं, अपनी आपत्ति मुझे बतलाती तुम। आदर के साथ उसने दमयंती को पियर भेज दिया विदर्भ देश में। दमयंती ने अपने पति के खोज के लिए अभियान आरंभ किया। कैसे खोजा जाए पति को, अब कहां खोजना। यायावर ब्राह्मणों के पास दमयंती ने यह काम सौंपा। दमयंती ने एक कविता बनाई और कहा आप स्थान स्थान पर जाकर के इस कविता का गान करो और इस कविता को सुनने पर किसके आंखों में आंसू आते हैं यह मुझे आकर के बताओ। एक ब्राह्मण ने कहा राजकुमारी जी मैं अयोध्या गया था, महाराज ऋतुपर्ण के यहां पर बाहुक नाम का एक अश्व सेवक है। मैं जब कथा गा रहा था उस कथा में यही था, मैं जब कविता गा रहा था कविता का सार भी यह था। अरे महापुरुष इतने सज्जन होकर के भी तुम इतने निर्दय कैसे हो गए, अपनी पत्नी को मध्यरात्रि में उसकी साड़ी काट करके अनाज करके तुम चले गए। तुमने अपने जीवन में कौन से कर्तव्य का पालन किया, कभी तो भी तुम्हें अपनी पत्नी का अपने बालकों का स्मरण करना चाहिए, आदि आदि इस विषय को लेकर के वो कविता थी। उसने कहा राजकुमारी जी मैं जब कविता गा रहा था वो बाहुक अपनी आंखों के आंसू बार बार पोंछ रहा, बाद में फपक फपक करके रोने लग गया। दमयंती ने कहा कुछ तो सूत्र मिला, अपने पिताजी से कहा पिताजी आपकी अनुमति से मैं एक साहसिक काम करना चाहती हूं, बहुत संभव है मेरे पति उसमें से मुझे प्राप्त हो जाए। दुखी पिता ने कहा करो बेटी, तुम स्वयं इतना प्रयास अपनी बुद्धि से कर रही हो, अद्भुत बात है। और दमयंती ने ऐसे ही आयावर ब्राह्मणों के साथ में एक सूचना भेज दी, पंडित जी आप जाकर के महाराज ऋतुपर्ण की सभा में गा गा करके कहना कि महाराज विदर्भराज की कन्या दमयंती का पुनर्विवाह होना है, वह स्वयंवर होगा और उसमें आपका आपको निमंत्रित किया गया है। जैसे ही उस पंडित ने वहां पर जाकर के ये गान किया, महाराज ऋतुपर्ण ने कहा यह कब है, तो कहा कल है। कल अयोध्या और अमरावती इतना अंतर, अरे वो अपना नया सेवक है नंद बाहुक, उसको बुलाओ। बाहुक को बुलाया गया। राजा ऋतुपर्ण ने पूछा बाहुक वेग से रथ चले न रुकते हुए, तो यहां से विदर्भ देश में जाने में कितना समय लगेगा। बाहुक ने कहा यदि हम अभी निकलते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। सी द स्पीड। अयोध्या में बातचीत चली है और बाहुक कह रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व पूर्व हम लोग विदर्भ देश पहुंच जाएंगे। ये महाराज नल की अश्वविद्या थी, तो चलो तैयारी करो अभी निकलना है। जी महाराज, लेकिन कोई विशेष प्रयोजन? अरे विदर्भराज की जो कन्या दमयंती, उसके पति का पता न लगने के कारण वो पुनर्विवाह करना चाहती है, उसके स्वयंवर में मुझे जाना है और कल सवेरे है वो। ये बात सुनी और बाहुक की तो छाती जल गई। दमयंती का पुनर्विवाह, सामान्य वेग से चलते उससे भी अधिक वेग से नल के घोड़े दौड़े। नल जो घोड़े लेकर के आया उसका वर्णन है महाभारत में। दुबले पतले लगने वाले घोड़ों को देख करके राजा ऋतुपर्ण ने कहा ये घोड़े वहां पहुंचाएंगे? नल ने कहा यही पहुंचाएंगे, मोटे नहीं पहुंचाते। आप लोगों को लगता है कि हनुमान जी महाराज अगड़म बगड़म, ऐसे नहीं है। रामदास स्वामी ने हनुमान जी का जो दर्शन किया उस समय उन्होंने वर्णन किया नेटका सड़पा तड़ु ही स्लिम। जब वो अपने में शक्ति का जागरण करते तब जो बन जाते बन जाते, बाकी हनुमान जी महाराज दुबले पतले से लगते हैं। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, नॉट इन अ राउंड बॉडी। स्वयं तो घोड़े कितने वेग से चले होंगे इसका एक ही उदाहरण आपको बतलाता हूं। चलते समय एकदम राजा ऋतुपर्ण का उपवस्त्र नीचे गिर गया, तो राजा ने कहा बाहुक रुको, मेरा दुपट्टा गिर गया है। बाहुक ने कहा हम चार योजन आ गए। दुपट्टा गिरा है ये कहते समय जितना समय लगा उतने में 8 मील पहुंच गए थे। उसने कहा रुकने का समय नहीं है, नो स्टॉप। मार्ग में जो वार्तालाप उनका चलता रहा, उस वार्तालाप में महाराज ऋतुपर्ण ने अक्षय विद्या नल को दी और अश्व विद्या नल ने ऋतुपर्ण को सिखाई, अथवा विद्या 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 का आदान प्रदान हो गया। चलो ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहुंच गए, रुकने की जहां व्यवस्था थी वहां पर उनको रोका गया। दमयंती ने सूचनाएं देकर के रखी थी, वहां पर सारी व्यवस्था करना, पानी भर के मत रखना, मटका रख देना, बिना जल का मटका रखना। और रसोई घर की व्यवस्था करना, अग्नि की व्यवस्था नहीं करना। और अपनी एक बढ़िया दासी से कहा, निगरानी रखो क्या क्या हो रहा है, मुझे बताओ। उसने आकर के कहा, राजकुमारी जी, वो जो उनके साथ बाहुक आया है ना, काला को लुटा ठिंगासा, लगता तो अच्छा नहीं है लेकिन है बड़ा विलक्षण। उसने हाथ आगे किया तो मटका अपने आप पानी से भर गया, उसने हाथ आगे किया तो अग्नि अपने आप जल गई। दमयंती को बहुत अच्छा लगा, सारे लक्षण मिल रहे लेकिन एक बात का उत्तर नहीं मिल रहा है। उसका रूप ये बोलती है, काला कलूटा ठिंगना, मेरे नल तो ऐसे नहीं थे। लास्ट टेस्ट, दमयंती ने केशिनी से कहा, उस दासी से, तुम एक काम करो, इन दोनों बच्चों को वहां पर ले जाओ। इंद्रसेन और इंद्रसेना, ये दोनों उनके बच्चे थे। उन बच्चों को लेकर के केशिनी वहां पर जब गई तो उन बच्चों को देख करके एकदम बाहुक आगे आने लगे। ये कौन अजनबी है, ऐसा देख करके बच्चे पीछे दौड़ करके हट गए। मेरे बच्चे उससे दूर है। बाहुक की आंखों में आंसू आ गए। केशिनी ने आकर के सारा वृत्त बतला दिया, सारी बातें मिल गई, टैली हो गई। अब दमयंती स्वयं चली, एकांत में बाहुक के सामने खड़ी हो गई। दमयंती को देखते ही बाहुक ने कहा, दमयंती तुम पुनर्विवाह कर सकती हो, यह बात मैं सोच नहीं सकता था। दमयंती ने कहा, नाथ आपका यह रूप कैसे बदल गया, विधाता की लीला, नल ने निकाल करके वो वस्त्र जो कर्कोटक ने दिया था अपने मस्तक पर रखा और रखते ही पुनर्रूप वह धारण उनका हो गया, अपने मूल रूप में आ गए। नल और दमयंती का अत्यंत प्रेम से मिलन हुआ। अपने पातिव्रत के प्रभाव से, अपने कौशल्य से, अपनी चतुराई से दमयंती ने नल को बराबर खोज लिया। अपने पिताजी को बुलाया, विदर्भराज और उसकी पत्नी धन्य हो, ऋतुपर्ण की क्षमा याचना की, महाराज ये स्वयंवर केवल हमारी बिटिया ने ऐसे ही घोषित किया था, आप क्षमा करें, आपको कष्ट हुआ। उदाहरण क्रम के ऋतुपर्ण ने कहा, चिंता मत करो, यदि मेरे यहां पर आने के निमित्त से आपकी बिटिया का घर पुनः बस गया, इससे अधिक आनंद मुझे और किसी बात का नहीं। मैं भी इन दोनों को आशीर्वाद दे रहा हूं, अक्ष विद्या में प्रवीण होने के साथ नल पुनः लौट करके अपने राज्य में आए, पुष्कर को चुनौती दी। पुष्कर से कहा, मैं तुम्हारे साथ पुनः द्यूत खेलना चाहता हूं। पुष्कर ने कहा, और मरने के लिए आया है क्या, चलो। द्यूत का आरंभ हुआ, नल ने पुष्कर का सब कुछ जीत लिया। अब नल को सारी अक्ष विद्या ऋतुपर्ण से मिली थी, सब कुछ जीत लिया, पुष्कर का सब कुछ गया, पुष्कर अकेला हो गया। महाराज नल ने कहा, पुष्कर गंवा दिया तुमने सब, सुनो पुष्कर, द्यूत खेल करके मुझे तुमसे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, द्यूत में तुम्हारे द्वारा मेरा सर्वस्व अपहरण किया गया, आज द्यूत में मैंने तुम्हारे सर्वस्व का अपहरण किया। एक प्रतिज्ञा करो, जीवन में फिर कभी जुआ नहीं खेलेंगे, न मैं खेलूंगा न तुम खेलोगे, फिर अक्षोम को पुरुष से हाथ नहीं लगाएंगे, तुम्हारा राज्य तुम्हारी संपत्ति तुम्हारा सब कुछ वापस तुम्हारा ही है। केवल तुम्हें यह सबक सिखाने के लिए मैंने एक बार तुम्हें जीत करके दिखाया, जाओ मौज से रहो। और महाराज नल और दमयंती ने पुनः अपने जीवन को अत्यंत उत्तुंग बना लिया। बृहदश्व मुनि ने कहा, राजन नल अकेला था, उसके कोई भाई नहीं था, एक नल ने इतना पतन देखने के पश्चात भी इतना उत्थान पुनः कर लिया, राजन तुम्हें इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे तो रत्नों जैसे चार भाई है, एक से एक बढ़िया है, इसलिए निराश न होते हुए इन दिनों को पूर्ण करना। दमयंती जैसी नल की पत्नी द्रौपदी उससे जरा भी कम नहीं है, राजन कुछ अधिक ही है, आपका उत्थान होगा, विश्वास रखो, निराशा को अपने पास फटकने मत दो। ऋषि मुनि ने पुनः आत्मविश्वास जगाया। ऋषि मुनियों की ये कथा वार्ताएं मनोबल को बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए ही हुआ करती थी। महाराज युधिष्ठिर का और समस्त पांडवों का ऐसा सत्संग चलते ही रहता। चलो थोड़ा सा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण देखते हैं, किस प्रकार अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। थोड़ा सा उसके पूर्व शिव जी का नाम उठते, सब देवो में देव निराले जय बम बम भोले,
सब देवो में देव निराले जय बम बम भोले, सब देवो में देव निराले जय बम बम भोले,
सब देवो
जय बम बम भोले, जय बम बम भोले भोले, जय बम बम भोले,
जय बम बम भोले,
जय बम बम भोले भोले भोले, जय बम बम भोले भोले भोले, जय बम बम भोले।
पार्वती पते हर हर महादेव।
महात्मा वैशंपायन वर्णन करते हैं राजन पांडव वनवास के ही काल में उत्तम तीर्थ यात्रा भी कर लेते हैं। तीर्थ यात्रा का बहुत बड़ा लंबा वर्णन है, उसमें हर तीर्थ में पांडवों ने क्या क्या किया यह भी सब आता है। उतना सब देखने का न समय है न उतनी आवश्यकता। तीर्थ यात्रा करते हुए पांडव बद्रिकाश्रम में आ जाते हैं। अंदर नारायण स्थान में उससे पूर्व वे स्वयं मानसरोवर की यात्रा करते हैं और मानसरोवर की यात्रा में पांडवों को जो अनुभव वहां पर आए ऐसा वर्णन है, आज भी जाने वाले यात्री को वे ही सब अनुभव आते हैं। प्रकृति के उस समय भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने प्रकट होकर के और चेतना खोई हुई भगवती द्रौपदी और अन्य कुछ लोगों को अपने कंधे पर लेकर के यात्रा पूरी करवाई। महात्मा वैशंपायन वर्णन करते हैं मुनीश्वरों, एक बार भीमसेन और द्रौपदी घूमते घूमते थोड़े से आगे चले गए और वह ऐसे वायु के झोंके से कुछ सुंदर पुष्प वहां पर आकर के गिरे ऊपर से। सुनहरे पुष्पों को देख करके, स्वर्ण कमलों को देख करके और उनके अद्भुत गंध को अनुभव करके भगवती द्रौपदी ने कहा, नाथ ऐसे और फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। भीमसेन ने कहा, क्या करोगी? उत्तर देखिए, द्रौपदी ने कहा, ऐसे और पुष्प मिल जाएंगे ना, एक बढ़िया हार बना करके महाराज युधिष्ठिर के गले में अर्पण करके उनको मैं प्रणाम करना चाहती हूं। सादी बात इसमें ध्यान में आनी चाहिए, इतना सब कुछ हो गया है धर्मराज की भूल के कारण। भूल को भूल के रूप में द्रौपदी ने जब कहना था तब कह भी दिया, लेकिन अपने पति के बारे में आदर को कम नहीं होने दिया। किसी की भी भूल को रोज रोज बोल करके उसके मन को दुर्बल नहीं बनाना चाहिए, तो फिर वो उठने की शक्ति खो देगा। अच्छा, दूसरी भी एक बात है, एक बात को देखते समय उसके इम्प्लीकेशन ध्यान में लेने चाहिए। भीमसेन के स्थान पर दूसरा होता तो क्या कहता है, फूल लाऊंगा मैं, माला पहनाऊंगी उसे। भीमसेन को भी अपने बड़े भैया के बारे में इतना आदर है कि उसने द्रौपदी को सराहा, सारे पांडवों में अपने बड़े भैया के बारे में ये जो आदर की भावना है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलो, भीमसेन ने द्रौपदी को शिविर के स्थान पर पहुंचा दिया और अकेले चले आगे गर्जना करते हुए। अब भीमसेन को भी जल्दी, भीमसेन से भी बहुत अधिक जल्दी मुझे, तो लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए भीमसेन चले जा तो रहे थे और गर्जना करते जा रहे थे ताकि वन्य श्वापद कोई बीच में हो तो हट जाए। आगे आगे मार्ग सकड़ा सकड़ा होता गया और भीमसेन ने देखा आगे एक बंदर सोया हुआ है,
बूढ़ा बंदर, उसकी पूंछ बीच में उस पगडंडी के ऊपर आई है। तो भीमसेन वहां पर रुक गए, रुक करके कहा, अय बंदर। वो बंदर हिला ही नहीं। तब भीमसेन ने उसके कान के पास ले जाकर के गदना की जोर से, तब उसे थोड़ी आंख खोल करके देखा, क्या है रे भाई, क्यों बूढ़ों को तकलीफ देते हो रे। भीमसेन ने कहा, बूढ़ों को भी समझना चाहिए कहां पड़े रहना, यहां काय को पड़े है। रास्ता दो, हमें आगे जाना है। तो उस बूढ़े बंदर ने कहा, मैंने तुम्हारा रास्ता कहां रोका है रे, पूछ बीत में आई है, लांग करके चले जाओ ना। देखो, भीमसेन ने उत्तर दिया, मैं कभी नहीं लांग सकता, मेरी मां ने मुझे सिखाया। भीम कहता है कि कभी भी जीवित वस्तु को और पूजनीय लोगों को, अपूजनीय वस्तुओं को लांगना नहीं चाहिए। क्यों रे भाई, बूढ़े बंदर ने पूछा। तो भीमसेन ने कहा, मेरी मां कहा करती, उनमें सब में देवताओं का निवास है। निर्गुण परमात्मा तु देहं व्याप्यावतिष्ठते तमहं ज्ञान विज्ञेयो नावमन्ये न लंघये। यदि मैं उनको लांघता हूं तो उनका अपमान होता है। मैं आपके भीतर जो परमात्मा है उसका अपमान नहीं करना चाहता। इन संस्कारों की ओर ध्यान दो। अच्छे घर का बच्चा आज भी पुस्तक को लांघेगा नहीं, पग लगने देने की तो बात ही नहीं। एक नोट पड़ी है, कागज का टुकड़ा ही है ना, ये मूर्ख अंधश्रद्धा वाले। अरे, अंधश्रद्धा का नाश करते करते श्रद्धा को मत नष्ट करना। 100 रुपयों का नोट यहां पर पड़ा है, भले घर का कोई भी बच्चा उसको पग नहीं लगाएगा, लगाएगा उसने क्या पड़ा है, कागज का टुकड़ा तो है। ये गंवारपन की बात। हमारे शास्त्रकारों ने कहा, महालक्ष्मी जो वैकुंठ में है, उस लक्ष्मी के जो अनेक अंश, अंशों के अंश, अंशों के अंश है, उसमें जो द्रव्य लक्ष्मी है, लौकिक द्रव्य लक्ष्मी, उसमें भी उसका एक अंश है, इसलिए उसका भी आदर करना चाहिए। रेवरेंस फॉर क्रिएशन, संसार में सभी की ओर देख करके आदर की भावना होनी चाहिए। भीमसेन को यह संस्कार है, इसलिए हमारी पुरानी माताएं रसोई के बर्तन को पग नहीं लगाती थी। अब स्टैंडिंग किचन के नीचे बंबई में तो भी कोई अपने पगों से बर्तन सरकाता नहीं है, ऐसा आज तो भी कह ले। एक बात ध्यान रखना, पदार्थों में आपकी जितनी आस्था होगी उतना वे पदार्थ आपके ऊपर अनुकूलता की कृपा करते हैं। पोथी कागज है, लेकिन इसके भीतर सरस्वती का अंश 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 एक अंशात्मक रूप है, इसलिए हम पोथी को प्रणाम करते हैं। और पोथी को प्रणाम करते हैं तो वो पोथी हमारे अनुकूल हो जाती है। आप पोथी को रोज पग से स्पर्श करो और आपकी बुद्धि कितनी नष्ट होती है आप स्वयं अनुभव करो। इसलिए घर में गीता जी पढ़ो चाहे मत पढ़ो, पढ़ना ही चाहिए, लेकिन कम से कम हर सनातनी के घर में एक गीता जी की पुस्तक पूजा के स्थान पर होनी चाहिए, प्रणाम के लिए तो भी होनी चाहिए। गीता को प्रणाम करते करते गीता आपके घर में आ जाएगी। चलो तो वो भीमसेन ने कह दिया मैं तो नहीं लांगूंगा। अरे अरे हटाओ ना ये पूछ। बूढ़े बंदर ने कहा भाई मैं तो इतना दुबला हूं तुम्हें हटा दो। भीमसेन ने अब पूछ को हटाना है तो अपनी गदा से ऐसा हटाना चाह नहीं हटी। फिर भीमसेन ने एक हाथ से पकड़ करके उठाना चाह वो हिली नहीं। फिर दोनों हाथ लगाए ये क्या है। भीमसेन ने उस बंदर की ओर देखा और बंदर बारीक आंखें करके देख रहा है कर भीमसेन पसीने से तर उस बंदर ने कहा तुम लांग करके नहीं जाना चाहते तो कूद करके ऊंची कूद लगा करके जा। भीमसेन ने चिढ़ करके कहा कैसी कूद लगाऊं वो हनुमान जैसी लगाऊं। तो उस बूढ़े बंदर ने कहा कौन हनुमान। भीमसेन ने कहा हनुमान मेरे बड़े भैया वायुदेव के बड़े पुत्र हनुमान जी है, वायुदेव का छोटा पुत्र मैं हूं। और एकदम भीमसेन के ध्यान में आ गया कि ये कहीं हनुमान जी तो नहीं है। और जैसे ही भीमसेन ने प्रणाम किया हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट किया बजरंगबली की। और उसके पश्चात हनुमान जी का और भीमसेन का वार्तालाप हुआ और हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उपदेश भीमसेन को किया है बहुत सुंदर। और भीमसेन से कहा अब भीमसेन ने कहा आपने विशाल रूप लेकर के सागर को लांघा, भयंकर रूप लेकर के आपने राक्षसों का संहार किया, ये सब हमने सुना था, आपका ये रूप कैसा है। हनुमान जी ने कहा समय समय की बात है, समय समय को देख करके लीला करनी होती है भैया। तो वो रूप आज भी आप ले सकते हैं। हनुमान जी ने कहा उसमें क्या हो गया। नहीं मैं देखना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा भीम यहां तक तुम्हारी बात ठीक थी, उस रूप को देखने की तुम किसी प्रकार से इच्छा मत रखो, मुझे आग्रह मत करो। नहीं यदि आप मेरे बड़े भैया हैं तो मुझे तो वो रूप देखना है। हनुमान जी ने कहा ठीक गेट रेडी। और हनुमान जी महाराज ने जो रूप धारण किया है भीमसेन तो थर थर धूलते हुए चरणों में गिर पड़े बजरंगबली की। हनुमान जी पुनः एकदम छोटे हो गए तब भी भीमसेन की कंपकपी और पसीना सूखा नहीं था। ये भीमसेन की अवस्था आपनों काई हुई। इसलिए हनुमान जी को दर्शन देने के लिए प्रार्थना मत करना, उनको बोलना लड्डू भेजते जाओ। और दर्शन देना है तो सालासर के बालाजी जैसे स्वामी बनकर के आए वैसे रूप का सौम्य रूप का दर्शन देना। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो युद्ध तो होने वाला है। अरे अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान होकर के मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, मैं केवल गर्जना करता रहूंगा और पापी मरते जाएंगे गर्जना से। मैंने तुम्हारा रास्ता इसलिए रोका था भीम कि आगे अब स्वर्ण पुष्पों को तुम लेकर के आना चाहते हो तो ले लो, जादती वहां पर मत करना, वो कुबेर का स्थान है, चुपचाप ले आना। भीमसेन ने कहा और यदि वहां पर किसी ने मुझे मारपीट की तो, हनुमान जी ने कहा तुम शांति रखना, संसार में बहुत वैरी निर्माण नहीं करने चाहिए। जाकर के हनुमान जी महाराज ने स्वर्ण कमलों को प्राप्त किया, यक्षों के साथ उनका युद्ध भी हुआ, बहुतों की उन्होंने पिटाई भी की। कुबेर को इस बात का पता चला, कुबेर ने कहा उनको ले जाने दो, स्वर्ण पुष्प ही चाहिए उसको, वो और कुछ नहीं करेगा। स्वर्ण पुष्पों को लेकर के जब हनुमान जी महाराज आए और सारी बात धर्मराज को बतलाई तो धर्मराज ने कहा कुबेर वहां पर है, चलो हम भी वहां पर जाएंगे। कुबेर के स्थान में जाने के लिए धर्मराज तैयार हुए, आकाशवाणी हुई, मर्त्य मानव का यहीं तक प्रवेश है, यहां से आगे प्रवेश करना उनके लिए ठीक नहीं है, लौट जाओ। जिस कुबेर से आप मिलना चाहते हैं वे कुबेर समय आने पर स्वयं आपसे मिलेंगे, लेकिन आप उनकी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना। देखो जीवन में जहां जाना मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना। पांडवों का वनवास ये चल रहा है उस समय उधर क्या हुआ है, भगवान महात्मा वैशंपायन महाराज कहते हैं अर्जुन पांडवों से विदा होकर के चले, भृगुतुंग मदोगत्वा गिरिमारुह्य शैशिरम तपोतप्यम महाराज मासम मूल फलाशन। भृगुतुंग शिखर के ऊपर पहुंचने के पश्चात शिशिर शिखर के ऊपर जाकर के अर्जुन पहुंचे हैं और कैलाश के उस स्थान में अब वे अपनी तपस्या का आरंभ कर रहे हैं। हिमालय में कश्यपदास्त्र की प्राप्ति के लिए रोज त्रिकाल पूजन भगवान शिवजी का वे करते हैं, आहार का नियंत्रण किया है, एक महीने तक केवल फलमूल कंदमूल फल खाते हैं, दूसरे मास में उनका भी त्याग कर दिया, केवल जल पी करके रहे, तीसरे मास में निराहार स्तुति एथ मासे पांडव नंदन, तृतीय मास में न कंदमूल फल न जल की पूर्ण निराहार, एक महीना शिवजी की आराधना, चतुर्थ मास में तो निराहार अवस्था में खड़े होकर के आराधना, ऊर्ध्वाहुश चतुर्थंतु मासमस्मिन स्थितस्तदा। अर्जुन के वीर रूप आपने देखे हैं, तपस्वी रूप अर्जुन कैसा है देखो, चार मास पूर्ण हुए, पंचम मास का पहला दिन था, पंचमे तो संप्राप्ते प्रथमे दिवसे गते, पांचवें महीने का पहला दिन अपराह्न की बेला, और एकाएक एक सूकर वराह दौड़ता हुआ आया अर्जुन की ओर। आत्मरक्षा में अर्जुन ने, क्योंकि उसका पूजा का समय हो गया था इसलिए तपस्या को रोक करके पूजा के लिए तैयारी करते समय उस वराह को देखा और बाण छोड़ना चाहता, इतने में सामने खड़े एक किरात ने ललकार करके कहा, ऐ बाण मत छोड़ो, ये मेरी शिकार है। तब तक अर्जुन ने बाण छोड़ दिया, उसने भी बाण छोड़ा। और इस बात को लेकर के उस किरात ने, भील ने अर्जुन के साथ जानबूझ करके कलह कर लिया। क्या समझते हो अपने को, यहां पर क्यों आए हो, ऐसा कहकर के जब बिना ही कारण से झगड़ा ही शुरू कर दिया तो अर्जुन को भी उत्तर देना आवश्यक हो गया। आश्चर्य की बात है, शस्त्रों से दोनों का युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन ने कमाल कर दिया है अपनी शस्त्र विद्या का, अर्जुन के द्वारा छोड़े गए सब बाणों को उसने अपने बाण से काट डाला। एक एक बार अर्जुन असंख्य बाणों को छोड़ते हैं, उसके एक बाण से सब खत्म। अरे अर्जुन के बाण ही समाप्त हो गए। तो अर्जुन ने गांडीव लेकर के उससे प्रहार करना चाहा, वो व्याध कैसा था पता नहीं, किरात उसने उस गांडीव धनुष को ही खींच लिया अर्जुन के हाथ से। अर्जुन के हाथ में कुछ नहीं रहा, अर्जुन पेड़ को उखाड़ करके मारना चाहता है, उसके एक बाण से पेड़ टुकड़े टुकड़े होकर के समाप्त। शिलाखंड अर्जुन ने उठाए, शिलाखंड का चूर्ण उसके एक बाण से होता है। अर्जुन को आश्चर्य इस बात का है कि मैं तो जी तोड़ करके युद्ध कर रहा हूं, वो मुस्कुराते हुए युद्ध कैसे कर रहा है। अर्जुन लगा रहा, अब कोई शस्त्र नहीं है, दोनों का मल्ल युद्ध आरंभ हुआ। भगवान शिव ने अर्जुन को खूब अच्छी तरह रगड़ लिया। ये स्वयं अर्जुन ने अपने भाइयों को निवेदन किया है बाद में, इतना आह्लादित होकर के शिव का अंग स्पर्श मैंने पाया। अर्जुन ने कहा, भगवान ने दबाया, अच्छी तरह मरम्मत कर दी। पूछा, और लड़ना है? अर्जुन ने कहा, अरे लड़ता लेकिन मेरी पूजा का समय हो गया। पूजा करते हो? जाओ जाओ, जिसकी पूजा करना चाहते हो करके आ जाओ वापिस, फिर और लड़ेंगे। अर्जुन ने जाकर के भगवान शिवजी की पूजा की, पहले से तैयार पुष्पमाला, उसके पूर्व बिलपत्र सब कुछ चढ़ाया। हे महादेव, आज मेरे जीवन में यह कैसा प्रसंग आया, कभी मैं हारा नहीं, आज क्या हो गया, कृपा करो, रक्षा करो। प्रणाम करके अर्जुन जैसे ही उठा, अर्जुन ने क्या देखा, अभी जो बेल के पत्ते चढ़ाए थे शिवलिंग के ऊपर अर्जुन ने, वो उस किरात के मस्तक के ऊपर थे, और वो चढ़ाई हुई माला उसके गले में थी। ये देख दी, अर्जुन के ध्यान में आ गया कि ये तो भगवान नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दौड़ करके अर्जुन जैसे समीप गए, अर्जुन ने वर्णन किया है, उमा सहायम देवंतम, अकेले भगवान शिव नहीं, साक्षात भगवती जगन माता पार्वती वहां पर खड़ी है। अर्जुन ने कहा, भैया दोनों के चरणों के साक्षात स्पर्श करके मैंने दर्शन प्राप्त किए। भगवान महादेव ने कहा, धन्य हो पार्थ, बोलो क्या चाहिए, पाशुपतास्त्र की मेरी इच्छा मैंने निवेदन की, अवश्य मिलेगा, बैठो। मैं भगवान महादेव जी के सामने बैठा, भैया उनके देह से कुछ तो भी दिव्य तेज निकला जो मेरे देह में प्रविष्ट हुआ, पाशुपतास्त्र मुझे अपने आप ही आ गया। भगवान महादेव ने कहा, तुम कृतार्थ, जैसे ही भगवान महादेव पार्वती सहित अंतर्धान हुए, गौरी शंकर भगवान की। साक्षात देवराज इंद्र वहां पर आए, यमराज वहां पर आए, वरुण वहां पर आए, अग्निदेव वहां पर आए, जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है समस्त देवताओं को उसके ऊपर कृपा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सभी देवताओं ने कहा हमारा भी अस्त्र ले लो, हमारा भी अस्त्र ले लो। अर्जुन को सब दिव्यास्त्र अपने आप प्राप्त हो गए। दूसरे दिन तो देवराज इंद्र अर्जुन को ले जाते हैं स्वर्ग में, स्वर्ग में अर्जुन का निवास। एक दो दिन नहीं, 5 वर्षों तक, 12 वर्ष के वनवास में अर्जुन के 5 वर्ष स्वर्ग में बीते हैं। एंजॉय करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। अर्जुन ने वहां पर भी दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया और संगीत विद्या में अर्जुन अत्यंत प्रवीण हो गए। अर्जुन ने सबका मन जीत लिया। एक दिन क्या हुआ, अर्जुन को समझो इन पापी कौरवों को और कर्ण को क्या अर्जुन के साथ बैठाते हैं आप। अर्जुन गीता का श्रोता है, अर्जुन हमारा आदर्श पुरुष है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय सखा और शिष्य है। क्या है अर्जुन, एक दिन की बात, देवराज इंद्र के पास अर्जुन बैठते थे सभा में, उर्वशी का नृत्य चला था। अर्जुन ने बड़े गौर से उर्वशी की ओर देखा। सायंकाल की बेला में देवराज इंद्र ने गंधर्वों के प्रमुख को बुलाया और कहा देखो चित्ररथ, एक काम करो, उर्वशी को अर्जुन की सेवा के लिए भेज दो। मध्यरात्रि का समय, अर्जुन अपने कक्ष में है, द्वार एकदम बजा, किसी ने खटखटाया। उठ करके अर्जुन ने द्वार खोला, अत्यंत अल्प वस्त्र, झीणे वस्त्र अपने देह पर धारण की हुई स्वर्ग की सर्वोत्तम अप्सरा उर्वशी सामने खड़ी है। यहां के वाक्य पढ़ता हूं, दृष्ट्वैव चोर्वशीं पार्थो लज्जा संवृतलोचनः। उर्वशी को इस रूप में देखा, अर्जुन का क्या हो गया, अर्जुन शर्मा गए, उसको लज्जा आ गई। लज्जा आंख में होती है, लज्जा संवृत लोचना, अर्जुन के नेत्र झुक गए। क्या किया उसने, ततोभिवादनम कृत्वा, उसके हाथ जुड़ गए। अर्जुन ने कहा देवी प्रणाम, अभिवादये त्वाम शिरसा, मेरे दास, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, किमाज्ञापयसे देवी प्रेयस्ये उपस्थितः, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। उर्वशी ने कहा पहले भीतर तो आने दो। फिर कहा अर्जुन आज मैं देवराज इंद्र की आज्ञा से आपकी सेवा के लिए आई हूं। दोपहर में मेरे नृत्य के समय आप मुझे घूर घूर करके देख रहे थे। इंद्र ने इसलिए हमारे प्रमुख से, गंधर्व प्रमुख से कहा और उसकी आज्ञा हुई, मैं आपकी सेवा के लिए आई। लेकिन एक बात और बतलाना चाहती हूं अर्जुन, इंद्र की आज्ञा से मैं नहीं आई। इंद्र की आज्ञा नहीं होती तो भी मेरे मन की लालसा थी कि कभी मुझे तुम्हारी सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए। अर्जुन ने कहा, आप क्या बोल रही है, मैं समझ नहीं रहा हूं। मैंने आपके नृत्य के समय उत्सुकता से आपकी ओर बहुत बार देखा था, ये बात सत्य है। उसका अर्थ कुछ और था। मैं क्यों देख रहा था बतलाता हूं। बचपन से हमने हमारे कुल की जो कथाएं हमारे पूर्वजों से बड़ों से सुनी है, उसमें हरदम सुना है कि हमारे कुल का आरंभ पुरुरवा और उर्वशी से हुआ है। आप हमारे कुल की आदि देवी है। मैं पुनः पुनः आपकी ओर देख रहा था, अपने को धन्य मानता हुआ कि मेरे कुल की इस आदि माता को देखने का सौभाग्य मेरे भाइयों में किसी को प्राप्त नहीं हुआ, मुझे प्राप्त हुआ। मैं कितना धन्य हूं, मैं कितना भाग्यवान कि मेरे कुल की आदि माता का मैं दर्शन कर सकता। सत्यम शृणु वरारोहे यत्वाम वक्ष्याम्य निंदिते पूर्वंशे ही ये पुत्रा। मेरी बात सुनो, उर्वशी ने कहा, पहले मेरी बात सुनो। उस समय आपके पूर्वजों की सेवा करने की बारी आई, वो अवसर मुझे मिला, मैंने तुम्हारे पूर्वजों की भी सेवा की, उससे क्या हो गया। अरे हम स्वर्ग की अप्सराएं हैं, हमारा यौवन नित्य होता है और कोई एक पुरुष हमारे पतिवती नहीं होते हैं। हम तो जो भी उपलब्ध हो जाए उसकी सेवा करने के लिए उपलब्ध होती है और इसमें हमें कोई दोष नहीं होता है। ये तुम कहां से बात सोचने लग गए हो। अर्जुन ने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। अर्जुन ने कहा, आपको क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है मुझे पता नहीं है। मैं जिस वंश से आया हूं उस वंश में मैंने यही सीखा है कि हर परनारी हमारे लिए मां होती है, और इसलिए आप तो केवल परनारी नहीं है, आप हमारी तथा च वंश जननी, हमारे वंश की आप आदि माता है। यथा कुंती च माद्री च शची चैव ममानगे तथा च वंश जननी त्वं हि मे। आप मेरे लिए पूज्य है, मैं आपको प्रणाम कर रहा। थर थर धूसती उर्वशी बोली, गंवार, ये तुम क्या बोल रहे हो। ये मेरा अपमान है। अर्जुन ने कहा, मैं कतई आपका अपमान करना कभी नहीं चाहूंगा। आप जाइए, मैं आपका सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप गच्छ मूर्धना प्रपन्नोऽस्मि, आपके पगों में मस्तक रख करके प्रणाम करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप जाइए, आप मेरी मां के समान हैं। और इसके पश्चात अर्जुन ने एक वाक्य कहा, जब मैंने आपको अपनी मां के रूप में देखा तो आपका भी कर्तव्य होता है कि आपके बेटे से कोई गलत काम नहीं हो जाए, इसकी चिंता आपको रखनी चाहिए, आप जाइए। उर्वशी ने कहा, जा रही हूं तुम्हें शाप देकर के कि तुम शंड हो जाओगे, नपुंसक। अर्जुन ने कहा, मैं बस स्वीकार करता हूं लेकिन मैं पाप नहीं कर सकता। उर्वशी चली गई। प्रातःकाल अर्जुन इंद्र के पास पहुंचे। पिताजी ये क्या हुआ? इंद्र ने कहा, बेटे बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी भी जो संयम नहीं दिखा सकते, वो तुमने दिखा करके हम सबको चकित कर दिया। धन्य हो तुम। अर्जुन ने कहा, लेकिन इसके कारण जो नपुंसकत्व प्राप्त हुआ उसका? देवराज ने कहा, धर्म का पालन करने वाले के लिए प्राप्त शाप भी अनुग्रह हो जाते हैं। ध्यान रखना, यह तुम्हारा नपुंसकत्व एक वर्ष के लिए रहेगा और वह तुम्हें अज्ञातवास में काम आएगा। जाओ, तुम जैसे पुत्र को पाकर के मैं भी धन्य हूं। ये अर्जुन का शील है। हमने अर्जुन को कहां ठीक से समझा है? यहां पर अर्जुन गए अपने शील से, अपने स्वभाव से सबको जीतते ही रहे। अर्जुन की शिक्षा पूरी हो गई। अर्जुन ने कहा, 5 वर्षों तक मैं आपके यहां रहा, आपने प्रेम से मुझे सब सिखाया, कुछ तो भी सेवा मुझसे दीजिए। जिसने उपकार किया उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, कृतज्ञता। सारे देवताओं ने मिलकर के कहा, अर्जुन एक मुसीबत हमारे ऊपर बहुत बड़ी है। निवात कवच नाम के अत्यंत भीषण समुद्र के निवासी दैत्य ये हम पर कब हमला बोलेंगे और कब हमें लूट खसोट करके मार करके जाएंगे पता नहीं चलता है, हम हैरान। उस समय का आतंकवाद। अर्जुन ने कहा, कोई भी कहीं पर भी कितना भी बलवान और कुशल है, आप मुझे केवल एक रथ और सारथी दीजिए, मुझे सेना भी नहीं चाहिए। अकेले अर्जुन ने जाकर के समस्त निवात कवचों का विनाश किया। लंबा प्रकरण है ये, मैं तो एक वाक्य में बोल रहा हूं। और ये महाभारत में बड़ी महत्वपूर्ण बात मानी गई। सारे के सारे देवताओं के लिए जो सिर दर्द बन गए थे, ऐसे निवात कवचों का विनाश अकेले अर्जुन ने किया है। मातली ने उस युद्ध का वर्णन किया कि मैं भी देखता रहा। मातली अर्जुन का सारथी है उस समय का, वो मूल में इंद्र का सारथी है। इंद्र ने अर्जुन के साथ अपना रथ दिया है और उस मातली ने यह वर्णन किया है। सारे के सारे देवताओं को प्रसन्न करके, उनके उपकारों का कुछ बदला चुका करके, 5 वर्षों के पश्चात अर्जुन पुनः अपने भाइयों से जब आकर के मिले, सभी को अत्यंत आनंद हुआ। वन पर्व का अत्यंत महत्वपूर्ण आख्यान सती सावित्री का, और उससे भी जीवन के लिए उपयोगी यक्ष पर प्रश्न का प्रकरण, जिसमें सारी जीवन की विद्या है, हम कल दें।
ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव,
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव,
हर धारी गौरा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे,
पंचानन राधे,
हंसासन गरुडासन,
हंसासन गरुडासन,
वृषभासन साधे
ओम हर 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 महादेव।
दो भुज चारु चतुर भुज दश भुज समुद्रति सोहे
पत समुद्रति सोहे
तीनों रूप निरख से त्रिभुवन जन मोहे
ओम हर 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 महादेव
श्वेतांबर पीतांबर व्याघ्रांबर अंगे
व्याघ्रांबर अंगे
कनकादिक विबुधादिक
कनकादिक विबुधादिक
भूतादिक संगे
ओम हर 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 महादेव
अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी
मुंडमाला धारी
चंदन मृग मद चंदा
चंदन मृग मद चंदा
भाले शुभ साई
ओम हर 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 महादेव
करके मध्य मंडल चक्र त्रिशूल धरता
चक्र त्रिशूल धरता
सुख करता दुख हरता
सुख करता दुख हरता
जग पालन करता
ओम हर 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 महादेव
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका
जानत विवेका
वाक्षर में शोभित
वाक्षर में शोभित
ये तीनों वेता
ओम हर 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 महादेव
त्रिगुण स्वामी जी की आरती भाव सहित गावे
भाव सहित गावे
कहत शिवानंद स्वामी
शिवानंद स्वामी
वांछित फल पावे
ओम हर 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 महादेव
ओम जय शिव ओंकारा प्रभु पर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव
अर्धांगी गौरा
ओम हर 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 महादेव
ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा संतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सेवन्ति कामकुलतं पकपाशराब्जै पुण्णागलादिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद गोपाल कृष्ण भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर